ప్రాంజనం శ్లాక చక్షురన్మిళితం స్మై శ్రీ గురువే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభిష్టం స్థాపితం జనభూతం స్వయం రూప కదామ అందు దాతి స్వదాంతకం. జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీద్వైత కదాధర శ్రీవాసాది గౌరభక్తులు. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరి రామ 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 హరే హరే. ఓం నమో భగవతే శ్రీ మహానృసింహాయ, దక్షాకరాల వదనాయ, ఘోరూరుపాయ, వజ్రనఖాయ, జ్వాలమాలినే మమ విఘ్నాన్ పచ పచ, మమ భయాన్ భింది భింది, మమ సత్తున్ విద్రావయ విద్రావయ, మమ సర్వరిష్టాన్ ప్రభాంజయ ప్రభాంజయ, ఛత ఛత హన హన చింది చింది, మమ సర్వభిష్టాన్ పురయ పురయ. మాం రక్ష రక్ష హుం ఫట్ స్వాహ. వెరీ స్పెషల్ శ్లోక మహామంత్ర. ఉగ్రం వీరం మహావిష్ణుం జ్వలంతం సర్వతోముఖం, నృసింహం భీషణం ముద్రం మృత్యుర్ మృత్యు నమామ్యహం. శ్రీ నృసింహ జయ నృసింహ జయ జయ నృసింహ, ప్రహ్లాదేశ జయ పద్మముఖ పద్మభృంగ. ఓం నమో భగవతే శ్రీ మహానృసింహాయ. సో आज भगवान नृसिंहदेव का पवित्र आविर्भाव तिथि है, नृसिंह चतुर्दशी. श्री नृसिंहदेव भगवान की जाए. अभी अभी कुछ मिनटों पहले भगवान नृसिंहदेव प्रकट हुए हैं. अभी तो शायद उनका हिरण्यकश्यप के साथ युद्ध चल रहा होगा. अब हिरण्यकश्यप को वध करके फिर स्तुति होगी. भगवान नृसिंहदेव इस तरह से हर कल्प में प्रकट होते हैं. भगवान नृसिंहदेव स्पेशल इनकार्नेशन ऑफ द लॉर्ड. पिछली बार हमने जब आपसे चर्चा की थी कि भगवान नृसिंहदेव प्रकट हुए थे प्रहलाद की रक्षा करने के लिए, तो जिस तरह से भगवान नृसिंहदेव का क्रोध जिस दृष्टि से दिखता है, कोई व्यक्ति को क्रोध तब आता है जब कोई व्यक्ति उनके प्रियजन को कष्ट पहुंचाता है. तो भगवान नृसिंहदेव का जो क्रोध है, उसकी जो तीव्रता है, उससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि प्रहलाद उनको कितने प्रिय है या फिर उनके भक्त उनको कितने प्रिय है. जब भगवान किसी गुण को, किसी लक्षण को, किसी वस्तु को प्रकट करते हैं, तो वो सुप्रीमसी, उनकी जो सर्वोच्च अवस्था है, उसका उसको कायम बना के रखते हैं. जब वो क्रोध करेंगे तो अनपैरेलल, उनके जैसा कोई क्रोध कर नहीं सकता, ऐसा दिव्य क्रोध प्रस्तुत किया भगवान नृसिंहदेव. क्योंकि प्रहलाद महाराज को हिरण्यकशिपु ने पहले तो संड अमरका के द्वारा समझाने का प्रयास किया, लेकिन प्रहलाद समझ नहीं समझ प्रहलाद तो ऑलरेडी समझे हुए थे, लेकिन हिरण्यकशिपु चाहते थे कि भगवान नृसिंहदेव हिरण्यकश्यपु ऐसा चाहते थे कि वो स्वयं को भगवान घोषित करे. हिरण्यकश्यपु अपने आप को भगवान मानते थे और उनको सबको यही सिखाया जाता था कि सब लोग भगवान हिरण्यकश्यपु की जय जयकार करें. जोर जोर से सब चिल्लाए भगवान हिरण्यकश्यपु की, सब लोग चिल्लाए, लेकिन प्रहलाद इस बात को मानते नहीं थे. आजकल हम देखते हैं कि समाज में सब लोग अपने आप को भगवान घोषित करते हैं, अर्थात भोक्ता बनना चाहते हैं, स्वयं को स्वामी समझते हैं. भगवान है ही नहीं, भगवान मर गया है, भगवान तुम ही भगवान हो, हम ही भगवान है, भगवान है तो यहाँ पर क्यों नहीं आते। तो इस तरह से जो असुरी प्रकृति के लोग हैं वो हिरण्यकशिपु के फॉलोअर्स माने जाते हैं। तो हिरण्यकशिपु वो प्रहलाद को बहुत ही स्ट्रिक्टली ये सिखाना चाहते थे कि तुम मुझे भगवान मानो, लेकिन प्रहलाद महाराज ये ऐसा व्यक्ति था कि जिसको जहाँ भेजते हैं, जैसे आप हरिदास ठाकुर की लीला में देखते हैं कि उनको जहाँ पर रखते वो आसपास में सब इलाका भक्त बन जाते। अभी इनका हेडेक ये था कि प्रहलाद को कैसे बदला जाए, लेकिन उनका हेडेक बदल करके चेंज हो गया। क्या प्रहलाद अपने मित्रों को भी यही सिखा रहे थे, कौमारम आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवत दुर्लभ मानुषम जन्म तदप्य अदृमर्सदम। और उनके मित्र लोग भी यही कहते थे, नहीं प्रहलाद की जो शिक्षा है वो परफेक्ट है, षंड अमर का जो सिखा रहे वो ठीक नहीं है। किसी को मित्र किसी को शत्रु मानना ये तो आसुरी विचार है। जो सज्जन व्यक्ति होते हैं तो सबका मित्र होता है, उसके लिए कोई शत्रु नहीं होता है। और कभी कभी षंड अमर का इधर उधर होते थे तो प्रहलाद कीर्तन करते थे अपने मित्र को साथ में लेकर के, और षंड अमर का कुछ देर के बाद जब आके देख रहे हैं ये क्या, अभी तक तो एक को चैलेंज करना था, एक को ठीक करना था, अब तो ये सबके सब ठीक हो रहे, सबको ठीक करना पड़ेगा। तो पहले उनको तुरंत स्मरण आया कि हिरण्यकशिपु ने कहा था कि अगर तुम प्रहलाद को ठीक करने में सफल नहीं हुए तो मैं तुम्हें मृत्युदंड दे दूंगा। तो षंड अमर का सोचने लगे, अरे ये तो ये लड़का तो हमें मरवा देगा, हम ब्राह्मण हम हमारी तो कोई गलती है ही नहीं, पता नहीं ये कहाँ से ये सिक्का है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे गुरुकुल में ये विष्णु के भक्त भगवान के भक्त छुपे वेश में आते हैं और यहाँ पर प्रचार करते हैं और चले जाते हैं। कई बार हमारे भक्त लोग जाते हैं अलग अलग कॉलेजेस में प्रीचिंग करने के लिए, तो कुछ लोग सोचते हैं कि इतना बड़ा परिवर्तन कैसे आया, ये व्यक्ति इतना पापी था, इतना अधम था, इतना होपलेस था, इतना अच्छा कैसे बन गया। तो षंड अमर ने शिकायत की हिरण्यकशिपु को कि ये व्यक्ति तो खुद तो विष्णु का नाम बोलता है जब करता है, लेकिन अब तो उसने अपने मित्रों को भी यही सिखाना शुरू कर दिया, इसलिए कल आप ये मत बताना कि हमने सिखाया, ये हमने नहीं सिखाया, और ये उसको सब कहाँ से शिक्षा प्राप्त होती है इसका मुझे हमें कोई ज्ञान नहीं। तो हिरण्यकशिपु ने पूछा, बाहर से कोई आता है? नहीं, टाइट सिक्योरिटी है, आपकी ही सिक्योरिटी है। ओ तो फिर इस बालक को ये बुद्धि आई कहाँ से? तो हिरण्यकशिपु ने पूछा प्रहलाद को, तुम्हें ये बुद्धि आई कहाँ से भगवान कृष्ण में? तो प्रहलाद मैं ने तुरंत बहुत सुंदर उत्तर दिया, मतलब न कृष्ण परतस्तुत हुआ, ये बुद्धि अपने आप से नहीं आती है, मतलब न कृष्ण परतस्तुत हुआ, दूसरों के द्वारा भी नहीं आती है, वो ये उन लोगों की मतलब भगवान के चरणों में स्थिर नहीं हो सकती जो लोग गृहस्थ जीवन में अत्यंत असक्त है और जो इंद्रिय भोग करने के लिए सब प्रकार के पाप कर्म में लगे हुए हैं, उन लोगों में इस प्रकार की बुद्धि आ ही नहीं सकती। और ये लोग अपने पाप कर्म का भुगतान करने के लिए अलग अलग प्रकार के नरक में जाते हैं और जब फिर आते हैं फिर वही चबाई हुई चीज फिर से चबाते हैं, पुनः पुनः चरित चरण आराम। इसलिए जो लोग इस संसार में केवल इंद्रिय भोग करने के लिए जीवन जीते हैं उन लोग का भविष्य बड़ा ही दुखमय है और बुद्धिशाली लोग इसमें फंसते नहीं, लेकिन ये मति भगवान के चरणों में केवल एक ही कारण से आ सकती है, एक ही तरीके से आ सकती है। क्या है वो तरीका? वो है महत सेवा पाद रजो अभिषेकम निष्किंचनानाम नवनीते यावत। भगवान के चरण कमल में उरुक्रम आंगरी, भगवान उरुक्रम भगवान के चरण कमल में जो मति है बुद्धि है वो केवल स्थिर होने के लिए एक ही उपाय है। क्या? जो भगवान के भक्त है उनके चरण कमल की रज से हमारे शरीर पर अभिषेक किया जाए, पूरे शरीर पर भगवान के भक्तों के चरण रज अपने शरीर पर लगाई जाए, तभी भगवान के चरणों में स्थिर मति आती है। हिरण्यकशिपु इन सब बातों को समझ नहीं पा रहा था, वह असुर श्रेष्ठ था, तो उसने कहा कि इस व्यक्ति को तुम लोग खत्म कर दो, इस प्रहलाद को समाप्त कर दो। तो प्रहलाद को अलग अलग स्थानों से फेंकने का प्रयास किया, पर्वत के ऊपर से फेंका, जो कि हम बात किया थे उस दिन सिंहाचलम, फिर अग्निकुंड में फेंकने का प्रयास किया, कुछ लोग उसको होलिका कहते हैं, फिर उसको सांप के कुंड में फेंका गया, फिर उनको समुद्र में बहा दिया गया, फिर अलग अलग हथियारों से मारने का प्रयास किया, विष दे दिया गया भोजन में, और हाथी के पैरों के नीचे कुचलने का प्रयास किया। तो इतना भयानक कार्य प्रहलाद महाराज के ऊपर अत्याचार हुआ हिरण्यकश्यप के द्वारा, और प्रहलाद चुपचाप सहन कर लिए। प्रहलाद ने कोई कंप्लेन नहीं की। कई बार हमें देखते हैं कि भक्तों को कोई कष्ट आता है तो कहीं जो भक्त कमजोर होते वो क्या कहते हैं, हाँ, हमें ये सब प्रकार का कष्ट भुगतना है, हम तो आपकी सेवा कर रहे हैं, हम तो आपके लिए सब कुछ कर रहे हैं, हम तो आपके आपके चरणों में सब कुछ समर्पित किया है और आप हमें ही नहीं छोड़ रहे, हमारी क्या गलती है। ये कई बार कुछ लोग एक COVID-19 से परेशान हो जाते हैं तो सोचते हम तो भगवान की सेवा में जुड़े हुए हैं और पाप करे कोई और भुगतेंगे, हम लोग हम क्यों भुगतेंगे। कभी कभी किसी को कोई कष्ट आता है भक्ति के मार्ग में तो कहते हैं कि हमसे सहन नहीं हो रहा है, हम कैसे सहन करें, बड़ा अत्याचार हो रहा है। लेकिन हमें से कोई भी ऐसा महान अत्याचार तो सहन नहीं किया जैसे प्रहलाद ने सहन किया। प्रहलाद हमें किसी ने पर्वत के ऊपर से नहीं फेंका, ना हमें किसी ने हथियारों से मारने का प्रयास किया। ऐसा महान जो अपराध या अत्याचार है तो प्रहलाद को, और आप सोचिए कि प्रहलाद कितने बोल्ड प्रीचर थे, सच ए बोल्ड प्रीचर, कि ऐसा भयानक अत्याचार उन पर हो रहा था फिर भी अपने पिता के अनुयायी नहीं, अपने पिता के पास जाकर के विष्णु का गुणगान गाते थे। जस्ट इमेजिन द हेड ऑफ एंटायर यू नो असुर साम्राज्य, उसके हेड उसके राजा के पास जाकर के विष्णु के गुणगान, मस्ट बी ए बोल्ड प्रीचर, और कोई भय नहीं उनको, ऐसा नहीं कि ये व्यक्ति ऑलरेडी इतना मुझसे खफा है और ये मुझे खत्म करने पर तुला हुआ है, और फिर भी सो बोल्ड, नो एंग्जायटी, नो फियर, नो अभय, निर्भयता में प्रहलाद जैसा शायद कोई और आपको मिलेगा ही नहीं, सो फियरलेस प्रहलाद। हाँ प्रभु जी बात तो आपकी सही है, फियरलेस, हाउ इट इज पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है, सिंपल, जस्ट फॉलो व्हाट गुरु सेड, नारद मुनि ने जो कहा वो सबका पालन किया प्रहलाद महाराज ने, एंड ही इज फियरलेस, कुछ नहीं हुआ उनको। प्रहलाद महाराज को इस तरह से फेंकने का भरसक प्रयास किया, अलग अलग तरीके से मारने का प्रयास करके प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। अब प्रहलाद को फिर भी उनके हृदय में इतनी करुणा भरी हुई थी, प्रेम भरा हुआ था, ये केवल 5 साल का बच्चा था, इसमें इतना प्रेम, इतना भक्ति ठूस ठूस के भरा था प्रहलाद के। ऐसा माना जाता है कि असुर के घर में ऐसा प्रहलाद का जन्म कैसे हुआ। वेल, इसके साथ जुड़ी हुई कुछ कहानियां ऐसी भी है कि पहले कोई कल्प में प्रहलाद में ऐसा कहा गया कि वो एक साधारण गंधर्व था और वो उसके एक प्रेमिका थी, और इन दोनों का एक लोग वो लोग विहार करने के लिए और आपस में झगड़ा हो गया, और झगड़ा हुआ तो दोनों ने खाना पीना छोड़ दिया, और प्रहलाद में जो गंधर्व था उस समय उसने खाना छोड़ दिया, पीना छोड़ दिया, और निरंतर रोता रहा। एक पत्थर था, पत्थर के जंगल में पत्थर के ऊपर, एक्चुअली नरसिंह देव का मंदिर था, वहां पर बैठ करके वो पूरा रात दिन रोता रहा, और जिस दिन ये सब हुआ फास्टिंग हुआ पूरा हुआ वो एक्चुअली नृसिंह चतुर्दशी का दिन था. सो दिस सम स्टोरीज लाइक दिस इन सम ऑफ द पुराणस कि जो भगवान नृसिंह तो बहुत प्रसन्न हो उसकी अज्ञानता से की कई सेवा से उसको वरदान दिया कि यू कैन बिकम फलाद. सम पीपल से सम कुछ लोग ऐसा कहते हैं कुछ पुराणों में ऐसा लिखा है कि फलाद मतलब वन ऑफ द द्वालपाल ऐसा भी कहा गया है. उनका पूर्व जन्म उनका नाम था सुमुखा ऐसा भी कहीं पर कुछ पुराण में है. समवेयर इट इज मेंशन डोंट नो एग्जैक्टली वेयर बट वेल जो भी है कोई ऐसा भी बताया गया है शास्त्र में कि जब प्रहलाद प्रकट होने वाले थे उसके पहले जब गर्भाधान कायादु का होने वाला था तो हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष का प्रतिशोध लेने के लिए तपस्या करने के लिए जब हिरण्यकशिपु गए तो जब तपस्या करने गए तो नारद मुनि ने सोचा कि इसके इसका बेटा प्रहलाद भक्त तभी हो सकता है जब ये गर्भ देने के टाइम पर भगवान का चिंतन करे तो क्या किया जा सकता है. तो वो सोच रहे थे तो उन्होंने एक पक्षी का रूप ले लिया और जब तपस्या करना शुरू किया हिरण्यकशिपु ने तो तुरंत उसके कान में आवाज शुरू कर दिया विष्णु विष्णु. तो हिरण्यकशिपु का नाम सुनकर ही भड़क जाता था. सो इधर उधर देखने लगा कौन बोल रहा है कौन बोल रहा है कोई नहीं मिला. वापिस शुरू कर दिया उसे ओम ब्रह्माय नमः ओम ब्रह्माय नमः विष्णु विष्णु. किसने बोला कौन बोला ऐसे वापिस वो इधर उधर देखा. अभी वो इतना क्रोध में आ गया दो तीन बार ऐसा हुआ इतना क्रोध में आ गया उसने सोचा कि इस क्रोध में तो मैं तपस्या शुरू नहीं कर सकता ठीक है तो अब मैं तपस्या कल शुरू करूंगा आज नहीं. तो उस दिन हिरण्यकशिपु वापस चले गए कायादु के पास. कायादु सोच में पड़ गए यार अब ये भी तो गए थे तपस्या शुरू करने के लिए बोला था कि पा वापिस आऊं भी शायद ना भी आऊं मैं तो लंबे समय के लिए तपस्या करने जा रहा हूं ये कैसे हुआ. तो क्या बात है स्वामी ऐसा क्या हुआ वापिस आ गए आप. तो हिरण्यकशिपु अपनी पत्नी को देखकर उससे आकर्षित हो गए और वो उसके साथ संबंध बांधने ही वाले थे और संबंध बांधने की संबंध भी बांध रहे थे. उस समय वो डिस्क्राइब भी कर रहे थे कि एक्चुअली आज मैं तपस्या शुरू करने गया उस समय कोई पक्षी निरंतर विष्णु 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 ऐसा बोल रहा था और वही विष्णु विष्णु बोलते समय कायादु को उन्होंने गर्भाधान दिया ऐसा कुछ जगह पर बताया गया है. सो लाइक दिस देयर मल्टीपल places some histories connected in this way of Prahlad is tarah aur Narad Muni ki kripa. Prahlad Muni Prahlad ke vishay mein kaha jata hai ki is the sadhana siddha aur is the kripa siddha. So well Prahlad jo hai wo mix hai sadhana siddha aur kripa siddha ka. Sadhana siddha usko kehte hai ki jo apni shakti se siddha prapt karte hai aur kripa siddha isliye kehte hai ki jo jisko kisi ki kripa prapt hui ho. तो वेल प्रहलाद महाराज इतने स्पेशल सोल है. प्रहलाद को इस तरह से कष्ट दे एक्चुअली प्रहलाद केवल प्रहलाद नहीं है. प्रहलाद महाराज वो हम सभी वैष्णवों की सभी वैष्णवों का प्रतिनिधित्व करते हैं हिरण्यकशिपु के जैसे समाज के सामने. अर्थात जो इच्छा से जो कार्य से भगवान नृसिंहदेव प्रकट हुए थे प्रहलाद की रक्षा करने के लिए तो एक्चुअली प्रहलाद को निमित्त बना करके वो ये प्रस्तुत करना चाहते हैं कि वो उनके अपने सारे भक्त जो भी शरणागत हैं उन सब के प्रति ये भाव भगवान का है कि उनकी रक्षा करेंगे बड़े से बड़े संकट से भी भगवान उनकी रक्षा करेंगे ये उद्देश्य है. जैसे आज हम सुन रहे थे कि जैसे हम सब लोग का जब मटेरियल वर्ल्ड में सबके हीरो होते हैं सिर्फ वर्ष प्रहलाद हमारा आध्यात्मिक हीरो है. अगर आपको बनना चाहते हैं तो कैसे बनेंगे प्रहलाद जैसा हम बनना चाहते हैं. यू वांट टू बिकम लाइक अ प्रहलाद इतने सहनशील इतने विनम्र और इतने क्षमाशील है ना. तो जब भगवान नृसिंहदेव वेल ये सब कथा तो बहुत विस्तृत है, लेकिन बड़ा आनंद आता है इस कथाओं को चर्चा करने में। भगवान नृसिंहदेव से जुड़ी कथा है। हिरण्यकश्यप ने सोचा कि प्रहलाद को समाप्त करने का सारा उपाय किया जाए। अब जब कुछ नहीं हुआ तो प्रहलाद को जितनी बार फेंकते थे मारने के लिए, अब प्रहलाद का कोई नाम निशान नहीं बचेगा, पूरा प्रहलाद हीन हो जाएगा। हाँ, एक इतना बड़ा वैरी मेरे ही घर में जन्म लिया, आज उसका सफाया हो जाएगा। कुछ देर के पश्चात उनके सामने एक आता था समाचार लेकर के, महाराज प्रहलाद जीवित है। ओ, फिर जीवित है, इस बार भी बच गया, ठीक है जाओ अभी उनको पर्वत से फेंक दो। दूसरे दिन आते थे, ये तो वापस आ गया। प्रहलाद महाराज को जब पर्वत से फेंका, कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि प्रहलाद महाराज को भगवान ने लघिमा सिद्धि दिया था। लघिमा सिद्धि से क्या होता है कि वो जैसे कोई रुई का टुकड़ा होता है, कॉटन, या किसी पक्षी का फेदर होता है, तो वो कैसे होता है, वो हवा में पूरा तैरता है, वैसे प्रहलाद को लघिमा सिद्धि के द्वारा पूरे हवा में तैरते 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 आराम से भगवान की गोद में आए। लाइक दैट, सो प्रोटेक्शन बाय कृष्ण। तो जब थोड़ी देर के बाद बताया प्रहलाद तो इसमें भी जीवित हो गए, और फिर से जीवित हो गए, उसको खाने में विष दे दो। तो खाने में विष दिया, लेकिन फिर भी फिर से जीवित हो गए। जो जो अलग अलग प्रकार के जो नक्षत्र विशेष करके शनि राहु, ये लोग जो कड़ा काम करते, जो हम लोग बोलते हैं सड़ा साथी, या केतु या राहु, ये जो हमें कष्ट देता है, ये करता है वो करता है, जो भी है वॉट एवर एस्ट्रोलॉजिकल, ये सभी हिरण्यकश्यप के इशारे पे काम करते हैं, इसको परेशान करो, तुम इसको खत्म करो। लेकिन प्रहलाद का जीवन में कुछ कर नहीं पाते थे, क्योंकि भगवान के भक्तों को एस्ट्रोलॉजी कुछ नहीं कर सकती। कुछ लोग कहेंगे प्रभु जी वो तो प्रहलाद जैसा होगा तो हमारे जैसे, इट्स ऑल डिपेंड। और इसे प्रहलाद का अपना केवल एक ही क्वालिफिकेशन है क्या, कि वो पूर्ण रूप से भगवान की शरणागत है। हम जिस भाव से भगवान के शरणागत है, भगवान उस भाव से प्रतिक्रिया करते हैं। तो अगर आप भी भगवान के शरणागत है पूर्ण रूप से, तो कोई एस्ट्रोलॉजिकल डिस्टर्बेंस आपको परेशान नहीं कर सकता। इफ यू आर सरेंडर फुली, वट एवर सरेंडर यू हैव, दैट मीन प्रोटेक्शन यू गेट। सो प्रहलाद के बार बार इस तरह से जीवित होने पर हिरण्यकश्यप ने बुलाया प्रहलाद को, कम यार। प्रहलाद को पूछा, ये बताओ प्रहलाद कि तुम्हें इतनी बार मारने का प्रयास किया तो तुम जीवित कैसे निकल जाते हो, ऐसा क्या चमत्कार करते हो तुम कि तुम्हें तुम्हारी हत्या नहीं हो सकती, ये कैसे संभव है। तो प्रहलाद ने कहा, इसमें कोई बड़ी चमत्कार की बात तो है ही नहीं, आप मुझे मारने का प्रयास ही करते हो इस तरह से, इसमें मेरा कभी नुकसान हो ही नहीं सकता, कैसे। आपने मुझे अग्नि में फेंकने का प्रयास किया, अभी अग्नि तो जो है वो तो मेरे भगवान का मुख है, क्योंकि सब प्रकार की आहुति तो उसमें ही जाती है यज्ञ में, आप डालते ओम स्वाहा तो वो तो अग्नि के माध्यम से भगवान विष्णु स्वीकार करते हैं, यज्ञ भाई विष्णु, तो अभी भगवान के अपने मुख में अगर मैं जाऊंगा तो मुझे कौन भला मार सकता, मुझे तो उल्टा ठंडा ठंडा लग रहा था, जब अग्नि में जलाने का प्रयास किया तो मुझे बहुत शीतल बहुत ठंडी लग रही थी, कि बहुत ठंडा हो गया ये सब, है ना, जैसे एसी फुल कर दिया ऐसा लग रहा था। फिर आपने समुन्द्र में मुझे फेंकने का प्रयास किया, अब समुद्र तो मेरा ननिहाल है, क्यों वो कैसे, माता लक्ष्मी देवी समुद्र मंथन से ही प्रकट हुए थे, और समुद्र देवी तो लक्ष्मी देवी के पिता हुए, तो इस नाते से जब मैं गया तो मेरा तो बड़ा अच्छे से स्वागत हुआ, जब मैं वहां पर गया तो सब लोगों ने अच्छे से स्वागत किया और मुझे कहा कि आओ आओ, इतने सालों पहले इतने समय पहली बार हमारे पास आए हो, हम तो ऐसे थोड़ी जाएंगे। उन लोगों ने मुझे तो रबड़ी खिलाई, समोसा खिलाया, कचौड़ी खिलाई, और क्या क्या फिस्ट सब मिष्टान खिलाया, और फिर पूरे आदर के साथ मुझे वापस छोड़ के चले गए। तट पर जाके छोड़ के चले गए। तब बताओ अब मैं क्या करूं, मैं तो गया था तुमने फेंक दिया तो मैं जिंदा वापिस आ गया। अच्छा फिर मैंने तुमने आपने फिर मुझे डाला था सर्प कुंड में, अब सर्प तो मेरे प्रभु की शैया है, उस पर अनंत शेष पर भगवान विश्राम करते हैं। अब जो सैया है वहां पर उनके ही सारे वंश है ये सर्प, वो तो भला मुझे क्यों काटेंगे, जब मुझे आपके फेंका तो ये सर्प मुझे कुछ किए ही नहीं। बोली ये तो हमारे प्रभु का सेवक है इसलिए इनको किसी ने इनको काटा नहीं, और आपने फिर हमें विष दिया। अब विष जो है वो तो मेरे मामा निकले कैसे, क्योंकि विष भी तो समुद्र मंथन से ही प्रकट हुआ था, तो समुद्र देव विष का पिता हुआ, और इस हिसाब से लक्ष्मी देवी मेरी माता है तो उसका वो लक्ष्मी देवी का भाई हुआ, और इस हिसाब से वो मेरे मामा निकले, तो वो मामा अपने भांजे को थोड़ी कोई मारेगा। और आपने प्रयास किया मुझे अलग अलग हथियारों से मारने के लिए, ये इतने सारे अलग अलग हथियार है, वो सारे हथियार तो सब जगह मेरे प्रभु तो परमात्मा के रूप में विद्यमान है, तो ये हथियार भला मुझे क्या कर सकते हैं। आप सोचिए कि प्रहलाद निरंतर विष्णु का ही ध्यान दे रहे थे कि किस तरह से भगवान सब जगह उनके आसपास रहे। चैतन्य में कहा गया है स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति सर्वत्र स्फुरत निज इष्ट देव मूर्ति। जो भक्त होते हैं वो स्थावर जंगम जो कुछ भी देखते हैं उन सब जगह उनका अपने इष्ट देव ही दिखाई देते हैं। तो प्रहलाद महाराज का ये विजन था, दिस वाज अ सॉलिड ट्रांसेंडेंटल विजन दैट ही वाज वाचिंग एवरीथिंग इन कनेक्शन विद कृष्ण। ये कैसे हो सकता है। सो हिरण्यकश्यप वाज सो एंग्री, उसने कहा तुम्हारी शक्ति कहां से आई। तो प्रहलाद महाराज से एक्चुअली जनरली असुर लोग यही पूछते रहते ये तुम्हारे पास शक्ति कहां से आती है, शक्ति कहां से। तो प्रहलाद महाराज ने कहा वही सेम पावर हाउस जो मुझे शक्ति देते हैं वो तुम्हें शक्ति देते हैं, सेम सेम सोर्स मुझे शक्ति देने वाला है विष्णु वही जो तुम्हें शक्ति देने वाला है, तो कोई मेरा कोई अपना कोई अलग से कुछ शक्ति नहीं है, वही शक्ति है भगवान की। तो प्रहलाद हिरण्यकश्यप बहुत क्रोध में आ गए, हिरण्यकश्यप को सोचा कि तो दूसरों के हाथ से तो मरेगा नहीं, मुझे लगता है कि तू मेरे हाथ से ही मरेगा, मैं ही तुझे खत्म कर सकता हूं और कोई खत्म नहीं कर सकता, इन लोगों की कोई किसी की कोई शक्ति नहीं है, और तुझे तुझे ऐसा अभिमान है ना, तुझे ऐसा गर्व है कि हर समय तेरा विष्णु तो जाके रक्षा कर देता है। ये विष्णु 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 मैंने बहुत सुन चुका तुम्हारे तेरे मुंह से, आज तो उसका खत्म करके छोड़ूंगा, कहां पर तेरा विष्णु आज मुझे बता, मैं उस विष्णु को खत्म करूंगा फिर तुझे भी खत्म कर लूंगा। प्रहलाद महाराज ने कहा वो तो सर्वत्र है सब जगह विराजमान है, ऐसा नहीं सोचा उन्होंने कहा हाय अब मैं क्या करूंगा, अब ये तो मारने पे तुला, वो अगर मैं कुछ उल्टा सीधा बोला ये तो मुझे मारने की बात कर रहा है। ही इज वेरी ओपनली, ही इज एवरीवेयर, वो सब जगह है, जहां पर मारना चाहो जहां पर आप ढूंढना चाहो ढूंढ सकते हो। अच्छा तो क्या वो सीलिंग में है ऊपर छत में। हाँ प्रहलाद मारने का छत में है। तो हिरण्यकश्यप खुश हो गया, सोचने लगा कि आज तो पकड़ लूंगा मैं, आज तो विष्णु को पकड़ लूंगा, पकड़ा गया आज छत में है ना, आज मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, देखता हूं आज कौन तुम्हारी रक्षा करता है। वो उस पिलर में है क्या। हाँ उस पिलर में भी है। अच्छा फिर दूसरा पिलर में, ये पिलर में है क्या, बड़ा वाला पिलर, इस पिलर में है। बोले हाँ इस पिलर में भी है। कोई ऐसा कुछ पुराणों में ऐसा लिखा है कि जब भगवान नृसिंहदेव देवी इतना क्रोध में थे और यहाँ पर हिरण्यकश्यप ने जब पूछा कि इस पिलर में है, जैसे प्रहलाद ने उस पिलर की ओर देखा तो उसके पीछे नृसिंहदेव खड़े थे। नृसिंहदेव ने उसको बोला या हाँ बोल यही पिलर में खड़ा हूं, बता इसको मैं इधर ही हूं। और प्रहलाद देखा ओ बाप रे बाप इतना भयानक स्वरूप और इस पिलर में है। हाँ है ना यही तो है, ये रहे नृसिंहदेव यही तो है, विष्णु यहीं पर है, इज हियर ओनली। तो हिरण्यकश्यप सोचा कि अब मैं पिलर ही तोड़ देता हूं, इस पिलर में है ना विष्णु, इस पिलर को ही मैं तोड़ देता हूं। तो हिरण्यकशिपु जाकर का उस पिलर को इतना जोर से मारा कि उस पूरा पिलर टूट गया है। और उस पिलर में से इतनी भयानक गर्जना हुई, इतनी भयानक गर्जना, अभी हमारे मनुष्य में क्या शक्ति है कि हम क्या गर्जना करें, लेकिन शेर की गर्जना जो होती है, इतनी भयानक गर्जना, इतनी भयानक गर्जना हुई कि ब्रह्मा जी को लगा कि ये क्या हो गया। आकाश में इंद्र अपने आसन से गिर गए, जो लोग विमान में थे वो विमान में से गिर गए, सब लोग भयभीत हो गए कि इतनी बड़ी गर्जना, सबके हार्ट बीट्स बढ़ गए, सब लोग रक्षा करो रक्षा करो, रक्षमाम रक्षमाम, हे प्रभु रक्षमाम, सब लोग सब देवता ब्रह्मा सारे ऋषि मुनि सब प्रार्थना करने लगे कि इतना महान भयानक आवाज कहां से आया, मानो ऐसा कोई प्रलय हो रहे वाला हो। ये नहीं सोच रहा कि केवल आसपास के कुछ लोग, सारे ब्रह्मांड में जितने लोग थे सबके सब भयभीत हो गए, सबके सब। ये नृसिंह देव का क्रोध है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, भगवान नृसिंह देव का क्रोध है। और इतना तोड़ फाड़ करके पूरा बिखेर करके ये पूरा खंभे को इतना मिलो मिलो तक उसका टुकड़े उछल कर गिरे, और भगवान नृसिंहदेव प्रकट हुए वहां से। और उनका वर्णन है कि वो इतने विशाल काय थे, इतने विशाल काय, ह्यूज, जैसे हम बता रहे थे आपको स्वर्ग सब आकाश में बादल को बेर बिखेर कर देते थे, इतना भयानक, इतना ऊंचा उनका स्वरूप नृसिंहदेव का। और ढूंढ रहे थे कहां गया वो, कहां गया वो दुष्ट, कहां गया वो, मच्छर जैसा दिख रहा था उनके सामने। लेकिन श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि सत्यम विधातु निज वृत्ति भाषितम, सत्यम विधातु, अपने वृत्ति अर्थात अपने दास अपने सेवक का वचन सत्य करने के लिए, सत्यम विधातु निज वृत्ति भाषितम, अपने भक्त का जो वचन उसको सार्थक करने के लिए जो भगवान नृसिंहदेव, उन्होंने एक अद्भुत स्वरूप धारण किया, भगवान ने एक अद्भुत अति अद्भुत रूप वहन क्या था वो, स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम, ऐसा शरीर उन्होंने धारण किया कि ना वो मृग का था अर्थात ना शरीर का था, सिंह ना सिंह का था और ना ही मनुष्य का था, और अद्भुत रूप अति अद्भुत रूपम उद्वहन, अति अद्भुत बड़ा अद्भुत स्वरूप उन्होंने स्वीकार किया, ऐसा कभी किसी ने देखा नहीं था, न मृगम न मानुषम। लेकिन क्यों, सत्यम विधातु निज वृत्ति भाषितम, अपने भक्त भगवान ने कहा था अर्जुन को, कौन्तेय प्रतिजान ही न मे वक्ता प्रणश्यति, ये कौन्तेय तुम ये प्रतिज्ञा करो, ये घोषणा कर दो कि मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होता, कभी विनाश नहीं होगा। और इस बात को सत्य साबित करने के लिए, अपने भक्त के वचन को सत्य साबित करने के लिए, अपने भक्त की रक्षा करने के लिए और अपने भक्त के वचनों की वचनों को सम्मान देने के लिए, उसको उसकी सुरक्षा करने के लिए भगवान प्रकट हुए खम्भे सभायाम, खम्भे सभायाम, सभा के खम्भ में, खम्भ में पकड़ो, सो नमृगम्नमाश। तो इस तरह से भगवान नृसिंहदेव खम्भा तोड़ करके सीधे प्रकट हुए, भगवान नृसिंहदेव की। तो भगवान नृसिंहदेव इस तरह से जब प्रकट हुए तो हिरण्यकशिपु ने देखा, हे भैया, तो सोचा कि ये कौन है, हे कौन हो तुम, ओ खंबे में से ऐसा चमत्कारी स्वरूप, कोई मनुष्य का पशु का एक साथ, ये कोई साधारण व्यक्ति तो हो ही नहीं सकता, ये जो ना पूछो मानो ना मानो, ये तो वही विष्णु है जो इस तरह का शरीर लेके आया है। सो व्हाट, Hiranyakasipu said, okay, I will fight. Main yuddha karunga. And that was amazing. Is Narsingh Dev ke keval garjana matra se Brahma adi devatae bhayabhit ho gaye. Asuro ke to baat hi chodo. Wo log ko to bhayabhit hona hi hai. Lekin devata log bhi bhayabhit ho gaye. Yahan tak ki Indra, Chandra, Varun, Shiv, Brahma sab, Narad Muni bhi. O baba re baba, itna bhayanak swarup. Lakshmi Devi bhi. Ye kaun hai? Itna bhayanak swarup. Itna क्रोध, इतना क्रोध. जब कोई व्यक्ति क्रोध में आता है तो आप क्या करते हो? अब दूर चले जाते हो, है ना भाई? वो जब तक ठंडा नहीं पड़ता उससे कुछ बात नहीं करना है. सब लोग भाग गए क्रोध में. भगवान क्रोध में. वेल, हिरण्यकश्यप तुरंत आई विल फाइट विद हिम. और फाइट करने गया और फिर भगवान के साथ उससे युद्ध हुआ. युद्ध करते करते हिरण्यकश्यप ने कभी कभी ऐसा लगता था कि नृसिंह का पल्ला भारी हो जाता था, कभी बच जाता था. एक बार तो ऐसा हुआ कि भगवान नृसिंहदेव ने हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया और पकड़ गया और उस और हिरण्यकश्यप भगवान नृसिंहदेव से अपने आप को छुड़ाने में सफल हो गया. धक्का मार दिया नृसिंहदेव को. और तो सब सब लोग देवता लोग अब क्या होगा. वो देवर वॉचिंग द फाइट. सब लोग फाइट देख रहे थे और देख रहे थे कौन जीतेगा कौन जीतेगा कौन जीतेगा कौन जीतेगा. और कभी हिरण्यकश्यप निकल गया तो उनके प्राण हथेली में आ जाते. अब क्या करेंगे? अब जब नृसिंहदेव से भी मरेगा नहीं तो हमारा तो हो गया कल्याण. तो फिर नृसिंहदेव ने थोड़ा साथ बच्चों के जैसे खिलाते हुए तरह से भगवान भी थोड़ा खेला उसके साथ युद्ध वगैरह सब करके. लेकिन फिर देखा कि सब मेरे भक्त लोग सब परेशान हो रहे, सब चिंता कर रहे कि क्या होगा क्या होगा. चलो बाजी यहीं पर खत्म करते हैं, यहीं पर गेम ओवर करते हैं. क्या भगवान ने पकड़ लिया हिरण्यकश्यप को, उठा करके चले घसीट करके ले गए कहां पर? आंगन में, उनके घर के आंगन में. और क्या कहा? जितने भी तुम्हारे जो इतने भी वचन थे, तुम भगवान को तुम धोखा देना चाहते हो तो देखो, कृष्ण को अगर धोखा देना चाहते हैं तो कृष्ण सुप्रीम चीटर है. अगर आप ये समझते हो आप कृष्ण को चीट करोगे, फॉरगेट इट. यू कैन नेवर बीट कृष्ण, यू कैन नेवर चीट कृष्ण. कृष्ण इज द सुप्रीम चीटर. हाँ, क्या वचन था? ना आकाश में ना धरती पे, चलो कूद में आ जाओ. फिर क्या कहा था? हाँ, ना मनुष्य से ना पशु से. देखा, ना मैं मनुष्य ना मैं पशु. फिर क्या कहा तुमने? ना दिन में ना रात में, अभी तो संध्या काल है. अब बताओ. फिर ना अस्त्र से ना शस्त्र से. तो ना मेरे नाखून ना तो अस्त्र है ना तो शस्त्र है. अब बताओ. ब्रह्मा के द्वारा स्थापित कोई भी व्यक्ति के द्वारा नहीं. बोले मेरा शरीर तो ब्रह्मा जी से बना ही नहीं है, उल्टा ब्रह्मा मुझसे बना हुआ है. अब बताओ. अब तो सारे वरदान फ्लॉप, अब कुछ नहीं हो सकता. तो अब हिरण्यकश्यप सोचा, अब मैं क्या कर सकता हूँ? भगवान नृसिंहदेव ने सोचा, अब तुम कुछ नहीं करना, जो करना है अब मुझे करना है. पकड़ कर सीधा उनके पेट में नृसिंहदेव ने अपने हाथ रखे और पूरा चीर फाड़ दिया जोर से. सब लोग देखे, वो फाड़ दिया, पूरा फाड़ दिया और फेंक दिया उसको. एक ऐसा अपने गोद पे से धक्का मार दिया. एक्चुअली फाड़ करके उसके आते जो थे वो आते निकाल करके उन्होंने गले में पहन लिया, जैसे एक सिंह की भांति. और पूरा उनका बाल वगैरह सब पूरा लहू लहू हो गया और उसने उनको फेंक दिया. आओ, कौन मुझसे युद्ध करना चाहता है? कौन युद्ध करना चाहता है? हिरण्यकश्यप को मारने के बाद भी उनका क्रोध समाप्त नहीं हुआ. और उनकी सेना, हिरण्यकश्यप की सेना, तो हिरण्यकश्यप की सेना को तो ऐसे नाखून से, केवल नाखून का स्पर्श करके, एक एक करके, जैसे कोई मच्छर मारता है ना, वो आपके रैकेट से मच्छर कैसे मारते हैं टक 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 करके, वैसे सबको एक एक करके, हिरण्यकश्यप की सेना को एक एक करके मार रहे थे. सबको खत्म कर दिया. अभी भी उनका क्रोध सहन नहीं हुआ. अभी भी वो ढूंढ रहे हैं और कोई है तो आओ आओ. कौन आता है प्रहलाद को परेशान करता है? कौन प्रहलाद को परेशान करता है? आओ, आई विल किल ऑल ऑफ देम. किसी को नहीं छोड़ूंगा. मेरे भक्त को कौन परेशान करता है? कोई किसी को नहीं छोड़ूंगा. और ऐसे भी जनरली कोई भी व्यक्ति क्रोध में आता है तो क्रोध से उनको नॉर्मल होने में थोड़ा टाइम लगता है, अर्थात क्रोध अचानक से नहीं जाता, एकदम से नहीं जाता कि अचानक में क्रोध आया और एकदम फिर ठंडी पड़ जाए, ऐसा नहीं होता, धीरे धीरे क्रोध जाता है। तो वो तो भगवान नृसिंहदेव के भगवान में से सब गुण आते हैं, तो भगवान नृसिंहदेव का क्रोध तो अभी चरम सीमा पे था और नृसिंहदेव इतना क्रोध में, इतना क्रोध में जाकर आसन पे बैठ गए और देख रहे थे इधर उधर, जोर जोर से गर्जना कर दो, और एक एक गर्जना पे ये देवता और ब्रह्मा जी इन सबको ऐसा लगता था कि बस अब तो ये खत्म हो गया, अब भगवान नृसिंहदेव को कोई हिरण्यकश्यप दूसरा मिलेगा नहीं, तब ये ब्रह्मांड को ही नष्ट कर देंगे, खत्म कर देंगे, सब कुछ प्रलय हो जाएगा। फिर एक गर्जना करते सबको लगा हाँ हाँ अब गए, अब खत्म, अब तो ये लास्ट थी, अब तो खत्म, अब ये पूरा पूरा ब्रह्मांड समाप्त हो जाएगा। फिर थोड़ी देर के बाद फिर एक गर्जना करेंगे, फिर वापिस। तो इस तरह से लोग इतने भयभीत थे उनकी गर्जनाओं से भगवान नृसिंहदेव का, और कितने गर्म श्वास उनके नाक से निकल रहे थे, और वेरी एंग्री, सुपर एंग्री। अब बात हुई का कौन जाएगा प्रहलाद नृसिंहदेव के पास, कौन जाएगा उनको ठंडा करने के लिए। तो सब लोगों ने पहले इंद्र को बोला तुम जाओ, ब्रह्मा जी ने बोला इंद्र को तुम जाओ, इंद्र बोले मैं कैसे जाऊंगा, मेरे शरीर पर तो आंखें हैं, वो तो उनको देख रही है, ये दो आंख से नहीं देख सकती, इतनी सारी आंखें क्या देखेगी, ऐसे ही जल जाएगी, मैं नहीं जा सकता, सॉरी। तो शिव जी को बोला तुम जाओ, बोले मैं प्रलय करने वाला हूँ लेकिन यहाँ तो मेरा ही प्रलय हो जाएगा, मैं इनको देखता हूँ तो मुझे डर लगता है, मैं नहीं जा सकता, मेरे तीन आंखें ऊपर से, मैं ये नहीं कार्य कर सकता। लक्ष्मी देव को कहा तुम जाओ, तुम्हारी तो पत्नी, तुम तो उनका पत्नी है, तुम्हें देख के तो ऐसे ही, बोले आज तक मैंने इनका ऐसा स्वरूप कभी देखा ही नहीं, बोले ये और मेरे पति इम्पॉसिबल, ये मेरे पति हो ही नहीं सकते, ऐसा भयानक स्वरूप, ना ना ना, मैं तो भाग ही गए, वो खड़े भी नहीं रहे, उधर छोड़ के चले गए। वह आप इससे इधर उधर सबको बोल रहे, ब्रह्मा जी को बोला आप खुद ही चले जाओ, ब्रह्मा जी को बोला, बोले नहीं 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 मेरे चार मुख है, चार मुख मेरी दाढ़ी है, दाढ़ी सब जट जाएगी, मैं नहीं आ सकता। तो सब लोग मना कर रहे थे, जाएगा कौन सामने जाने के लिए, कुछ ऐसा कहा, कुछ पुराणों में ऐसा कहा है कि गणेश गणपति जो कि नरसिंहदेव के भक्त है वो एक्चुअली निरंतर नरसिंहदेव का पूजन करते है। विघ्नान विहंतु मलमस्य जगत यस्य यत्पाद पल्लव युगम विनिदाय कुंभ द्वंद्वे प्रणाम समय सगणाधिराज, विघ्नान विहंतु मलमस्य जगत यस्य गोविंदमादि पुरुषं तमहं विजामि। तो ये गणपति गणेश विघ्न विनाशक इसलिए हुए क्योंकि वो निरंतर नृसिंहदेव का चिंतन करते हैं। अब जब नृसिंहदेव का चिंतन करते हैं उनकी उपस्थिति अपने आप में विघ्न विनाशक है। अगर कोई नृसिंह भक्त है अगर उनको आप केवल आप कुछ करते नहीं केवल आपके घर में एक बार एंटर करते तभी भी विघ्न विनाशक हो जाता है, सब कुछ शुभ हो जाता है, अपने आप सारे विघ्न नष्ट हो जाते हैं, बिकॉज दे आर ऑलवेज कैरिंग लॉर्ड नृसिंहदेव इन देयर हार्ट। सो भगवान नृसिंहदेव का बोले मैं जाऊंगा उनको प्रसन्न करने के लिए, आओ तुम जाओ। तो अपने चूहे का आसन पर गणपति छाती टान करके भगवान नृसिंहदेव के सामने शुरू किया आने के लिए, अपने चूहे के ऊपर बैठ करके, और आ रहे थे भगवान नृसिंहदेव ने दूर से देखा गणपति आ रहा है चूहे के ऊपर बैठ करके, और भगवान नृसिंहदेव ने देखा पास आ रहा है भगवान एक बार ऐसा किया नृसिंहदेव गणपति चूहे के ऊपर से गिर गए। तो भगवान नृसिंहदेव को हल्का सा हंसी आ गया, थोड़ा स्माइल आ गया, लेकिन लोगों ने कहा ठीक है देखो कोई बात नहीं, जो भी किया गणेश जी थैंक यू वेरी मच, तुमने कम से कम थोड़ा तो लाइट किया मूड, थोड़ा लाइट मूड किया नृसिंहदेव का, इतना क्रोध थोड़ा सा तो फर्क पड़ा। लेकिन ब्रह्मा ने कहा कि ऐसे तो काम चलने वाला नहीं है, ऐसे कोई गणेश जी के जाने से कुछ होने वाला नहीं है, तो किसको भेजा जाए, अब प्रहलाद तुम्हारे लिए प्रकट हुए तो तुम्हें ही जाना पड़ेगा। अब नहीं प्रहलाद तो 5 साल का बचा, लेकिन इसके लिए ही प्रकट हुए भगवान नृसिंहदेव, और इसको देखकर ही भगवान नृसिंहदेव का क्रोध शांत होगा, ठीक है प्रहलाद जाओ तुम जाओ। और प्रहलाद महाराज बिना कोई पैसे जाकर सीधा नृसिंहदेव के चरणों में जाकर के धन्यवाद प्रणाम किया, और जैसे ही भगवान नृसिंहदेव ने प्रहलाद को देखा इतना प्यार उमड़ आया प्रहलाद को देख करके सीधा उठा करके प्रहलाद को अपनी गोद में बिठा दिया और उसका सिर चाटने लगे, जैसे शेर अपने बच्चे को चाटता है वैसे भगवान सिंहदेव उसका सिर चाटने लगे। और उसको उसको देख करके इतना प्यारा है, समझ जितना इंटेंसिटी में उनका क्रोध था उतनी इंटेंसिटी में उनका प्यार उमड़ने लगा प्रहलाद के लिए, क्योंकि उनके लिए तो प्रकट हुए थे। तो ये प्रहलाद महाराज की रक्षा करने के लिए भगवान नृसिंहदेव प्रकट हुए, विशेष करके एक्चुअली प्रहलाद महाराज जैसा हमने पहले बताया कि वो सभी भक्तों का प्रतिनिधित्व करते हैं, अर्थात कभी भी भक्तों को संकट आएगा तो भगवान नृसिंहदेव उनकी रक्षा करेंगे। वेल, इनमें से कई कथाएं तो आपने ऑलरेडी सुनी चुकी है, तो हम तो ये केवल आज इसलिए सब कथा भी आपके साथ चर्चा कर रहे थे कि इसको वर्णन करने में बड़ा मजा आता है, सुनने में बड़ा मजा आता है, बड़ा आनंद आता है। और आज का ये स्पेशल दिन है कि जब भगवान नृसिंहदेव प्रकट हुए हैं, तो इसलिए हमने ये कुछ नृसिंहदेव की कथा से कुछ सम पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस किए। कल हमने बहुत सारे नृसिंहदेव के विग्रहों के विषय में बताया था, लेकिन आज मेरा जो सबसे प्रिय विग्रह है और जो हमारे मायापुर में विराजमान है भगवान नृसिंहदेव, और इस्कॉन के जितने भी अंतर्राष्ट्रीय भक्त हैं, सभी भक्तों के सबसे जो प्रिय मूर्ति भगवान नृसिंहदेव की जो है, जो सबके ऑल्टरों में विराजमान है आज सबके घरों में, शायद ही कोई ऐसा घर होगा भक्त का कि जिसमें मायापुर के भगवान नृसिंहदेव की फोटो या मूर्ति ना हो, फोटो या उनका स्वरूप ना हो। Hardly you will find any place. Just imagine, so famous and so much loved by his devotees. It's very special form. तो हम सोच रहे थे संक्षेप में आपको इसके विषय में चर्चा करें। तो actually भगवान नृसिंहदेव को प्रकट करने का उद्देश्य मायापुर में यही था कि सब प्रकार के संकटों से रक्षा हुए। जब प्रभुपाद जब 1970 में प्रभुपाद जब इस्कॉन की जब स्थापना हुआ, तो उस समय तो प्रभुपाद जी ने नृसिंह प्रेयर नृसिंह स्तुति करने का उसका आदेश भक्तों को नहीं दिया था, लेकिन फिर जैसे जैसे प्रचार बढ़ता गया और प्रभुपाद जी ने देखा कि भक्तों के सामने संकट आ रहे हैं, उनको समस्या आ रही है, इसलिए फिर प्रभुपाद जी ने कहा कि अब तुम नमस्ते नृसिंहाय प्रेयर जो है वो हम गाएंगे एट द एंड ऑफ टूडेज टॉक। नृसिंह प्रेयर आप सब भक्त गाइए, ऐसा प्रभुपाद जी ने सब भक्तों को सुझाव दिया। तब से नृसिंह प्रेयर अभी देखा जा रहा है, लेकिन कि नृसिंह प्रेयर का इंटेंसिटी बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जाता है वैसे वैसे भक्तों के संकट भी बढ़ते जाते हैं, जैसे प्रचार बढ़ता जाता है वैसे संकट बढ़ता जाता है। तो भक्तों को अब नृसिंहदेव को दिन में 10 बार आवश्यकता पड़ती है कि हे प्रभु रक्षा कीजिए, हे नृसिंहदेव रक्षा कीजिए। सो भगवान नृसिंहदेव रक्षा करने के लिए प्रकट हुए हैं, और '77 में प्रभुपाद जी लीला समाप्त करने के पश्चात इस्कॉन का प्रचार तो बढ़ ही रहा था, लेकिन हमारा जो हेडक्वार्टर है श्री प्रभुपाद जी ने हेडक्वार्टर के रूप में मायापुर को सिलेक्ट किया था, एक्चुअली वहीं से हमारा संकीर्तन आंदोलन शुरू हुआ है। तो प्रभुपाद जी का इच्छा था कि वहां पर बड़ा विस्तार से विशाल मंदिर बने, और जो टीओपी का प्रोजेक्ट है वो भी वहीं पर बनने का नित्यानंद प्रभु ने भविष्यवाणी भी की है, तो अभी बन ऑलमोस्ट बन चुका है। तो प्रभुपाद के जाने के कुछ साल बाद करीब 1984 में मार्च महीने में ऐसे तो निरंतर कभी ना कोई ना कोई, आजकल तो मायापुर आपको लगता है कि बड़ा फैल गया है और सब कुछ मॉडर्न हो गया और काफी अच्छा है, लेकिन उस समय 1980s में वहां पर बहुत प्रॉब्लम होते थे। कभी ना कभी रात को आक्रमण होता था, कुछ डाकू लोग आते थे, कभी कोई चोर आ जाता था। उन लोग को ऐसा था कि ये लोग विदेशी लोग हैं, इनके पास बहुत पैसा होगा, तो और दूसरा एक समस्या ये भी था कि आसपास में बहुत सारे वहां के जो लोकल लोग थे, जो मुस्लिम समुदाय के थे, वो लोग ऐसा सोचते थे कि इन लोग को यहाँ पर रखेंगे तो हमारी समस्या बढ़ जाएगी, इसलिए ये लोग जमीन सब हमारी ले लेंगे तो हमारे पास कुछ बचेगा नहीं, तो इनकी सब इनको सब ये विदेशियों को हटाओ भगाओ यहाँ से मारपीट करके। तो विशेष करके डाकू लोग आते थे, तो ऐसे तो कई बार डाकू लोग आए, लेकिन बाद में एक दिन ऐसा हुआ कि रात को 12:30 के बीच करीब डाकुओं का आक्रमण हुआ बहुत सारे, और ये लोग इस बार तो आए थे पूरा गन और एंड ग्रेनेड्स वो सब लेकर के आए थे और आक्रमण किया आधी रात को। तो सब भक्त लोग अचानक से चौकन भाग दौड़ मच गई, भक्त लोगों ने कि आक्रमण हुआ है। सब लोगों ने पहले तो मंदिर के दरवाजे को कस के बंद किए थे, लेकिन फायरिंग होना शुरू हो गया था, फायरिंग रात के समय में। तो इसमें हमारे एक प्रभुपाद जी का सन्यासी शिष्य है अभी, उनके पाँव में भी गोली लगी थी और उनका पाँव काटना पड़ा था, रही तो लेस भक्ति राग गोस्वामी, उनका पाँव काटना पड़ा था। और भी कई भक्तों को इंजरी हुई थी। और इन लोग का मुख्य भक्तों का मुख्य उद्देश्य ये था कि हमारे मंदिर के जो विग्रह है उनको कुछ ना हो, बाकी सब तो ठीक है लेकिन विग्रहों को कुछ नहीं होना चाहिए, ये लोग पता नहीं क्या कर देंगे। अब मंदिर में खुला बॉम्ब फेंकते थे, ऐसे मंदिर के गेट में से ऐसे खुला बॉम्ब फेंकते थे, और जैसे मानो तो ये जब सब हुआ समस्या तो भक्त लोगों ने मंदिर के ऑल्टर के पास सुरक्षा प्रदान सब सुरक्षा करने के लिए, लेकिन वहां पर भी बड़ी मारपीट हुई। और अंत में इन लोगों ने और कुछ तो नहीं लेकिन प्रभुपाद का मूर्ति चोरी किया और राधा रानी का मूर्ति चोरी किया राधा माधव ऑल्टर से, बहुत सुंदर मूर्ति था। लेकिन प्रभुपाद के मूर्ति को तो इन्होंने कैसे भी करके वापस लिया भक्तों ने बाद में, लेकिन राधा रानी का मूर्ति नहीं मिला वापस, ये दो मूर्ति चोरी करके चले गए। तो बहुत दुख हुआ भक्तों को। और बाद में सब समस्या थी कि क्या किया जाए क्या किया जाए, सब भक्तों के मन में बड़ी परेशानी थी। सब लोग मीटिंग किए कि अब क्या किया जाए इसको सॉल्यूशन करने के लिए। तो उस समय जो को डायरेक्टर थे उस समय भवानंद प्रभु, सो ही वॉज दैट टाइम भवानंद स्वामी, सो भवानंद प्रभु उन्होंने भक्तों के बीच में ये बात बताई कि कुछ दिन पहले मुझे एक सपना आया था और सपने में मैंने देखा कि इस तरह से डाकुओं का अटैक हुआ है हम पर, और भगवान नरसिंह देव वहां प्रकट हुए और सबको एक एक करके खत्म कर रहे हैं, एक एक करके मार रहे हैं, वह सबको एक एक करके डकैत सबको एक एक करके मार दिया भगवान नरसिंह देव ने। तो ये सब रेगुलर जो प्रॉब्लम्स आते हैं इसका एक ही सॉल्यूशन हो सकता है, क्या कि हम भगवान नरसिंह देव के विग्रह की स्थापना करें यहाँ पर। तो भक्त लोग पहले तो सोचे कि कैसे करें, तो फिर आपस में चर्चा हुई कि जब ऐसा नहीं कि इस्कॉन के भक्तों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, लेकिन भक्तिनाथ ठाकुर और भक्तिदान सरस्वती के समय पर जब ये डाकू लोग योगा पिच पर आक्रमण करते थे तो भक्तिनाथ ठाकुर ने तुरंत भगवान नृसिंहदेव के विग्रह की स्थापना करवाई, और जिस समय से स्थापना करवाई उस समय से सारी समस्या हल हो गई। भगवान नृसिंहदेव के प्रकट होने से ही मंदिर के विघ्न अपने आप नष्ट हो गए। तो सब भक्तों ने बात तो सुनी कि बात तो अच्छी है, तो हम नृसिंहदेव के विग्रह को लाना चाहिए। पहले सोचा कि उनकी पूजा कौन करेगा, सुना है कि नृसिंहदेव के विग्रह की पूजा इतनी आसान नहीं होती, बड़ी कठोर होती है, और केवल ऐसा भी माना जाता है केवल नैष्ठिक ब्रह्मचारी जो होते हैं वही नृसिंहदेव की पूजा कर सकते है, सब तो कर नहीं सकते। और हम से कोई गलती हो गई तो भगवान ऋषिदेव किसी और में क्या करेंगे, तो नहीं बोले ऐसा नहीं करेंगे, अपने मैनेज करेंगे विल्लू वर्षी बाप दोनों सिंहदेव। सो दो भक्तों को चुना कि आप कैसा स्वरूप हमें चाहिए, ऐसा स्केच बनाइए। तो इन लोगों ने स्केच बनाना शुरू किया और उन्होंने कलकत्ता में बात किया भक्तों से, भाई आप हमारे लिए कुछ सहायता कर सकते हो, कुछ डोनेशन की आवश्यकता है, हमें यहाँ पर भगवान सिंहदेव के विग्रह को स्थापित करना है, उसमें बहुत खर्चा भी होगा। सो सब भक्त तुरंत सब तैयार हो गए, यस 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 हम तैयार है डोनेशन देने के लिए, हम तैयार है डोनेशन देने के लिए भगवान सिंहदेव को स्थापित किया जाए। सो ये तो तय हो गया कि भगवान सिंहदेव को स्थापित किया जाए, लेकिन बाद में अभी स्केच बन ही रहे थे, लेकिन डिवोटीज स्केच करे तो उन्होंने कहा कि मेरे माइंड में भी कुछ स्केच है, तो उन्होंने जो अपने सपना में उन्होंने देखा था वो सब बोला कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा। तो हमारे एक भक्त थे आत्म तत्व प्रभु प्रभुपाद के डिसाइपल, वो भी वो इसमें उस समय उपस्थित थे, उन्होंने बोला मैं स्केच क्रिएट कर सकता हूँ, और पंकजांगी प्रभु को कहा कि तुम सेवा करोगे, भगवान सिंहदेव को अगर हम यहाँ पर लाते हैं तुम उनकी पूजा करोगे, तो इसे रोके हम पूजा करेंगे। तो कुछ समय के बाद उन्होंने स्केच तैयार किया और ऐसा तय किया गया कि ये जनरली इस प्रकार की मूर्ति को बनाने में 3 महीने का समय चाहिए, 3 months। तो बोले बड़ा अच्छा है, 84 में बात हुई, मीटिंग हुई, तो अपने 3 महीने के बाद नृसिंहदेव की मूर्ति को स्थापित कर देंगे। तो हमारे जो भक्त है वो गए वहाँ पर, यू नो आत्म तत्व प्रभु, ही वेंट टू साउथ इंडिया, और वहाँ पर गए जाकर के वो जो नंबर 1 स्थपति अर्थात जो शिल्पी उनसे मिले, जो वहाँ का सबसे प्रसिद्ध और सबसे पुराना आई मीन सबसे होशियार, उनके पास जाकर के उनको मिले, तो कहा कि हमें भगवान नृसिंहदेव की मूर्ति बनानी है। वो व्यक्ति इतना एक्सपर्ट था कि वो केवल मूर्ति नहीं बनाता, वो केवल मंदिर की डिजाइन भी बताता था कि इस प्रकार से मंदिर होना चाहिए, इस प्रकार का मंदिर में इतनी इतनी चीज होनी चाहिए, बहुत एक्सपर्ट था, बहुत ही एक्सपीरियंस पर्सन था। तो उन्होंने बताया कि हमें इस प्रकार की नृसिंहदेव की मूर्ति स्थापित करना है, और जैसे ही उन्होंने स्केच देखा बोले ये स्केच, ये मूर्ति सॉरी ये मैं नहीं बना सकता। तो बोले कि नहीं बना सकते, क्यों नहीं बना सकते, यू नो बोले ये उग्र नृसिंह है, बोले नहीं सॉरी मैं नहीं बना सकता। तो कोई बात नहीं, दूसरे के पास जाते तो पूरे आसपास में सबके पास अलग अलग जगह जाकर के भाई ये मूर्ति बनाए, सब ने मना कर दिया, सब बोले हमसे कुछ नहीं होगा। तो किसी ने कहा कि भाई ऐसा करो कि तुम जो ओरिजिनल स्थपति था पहले गए, बोले वो व्यक्ति बना सकता है तो बना सकता है, बट ही एक्सपीरियंस पर्सन, हम नहीं बना सकते ये काम, ये मूर्ति हम नहीं बना सकते। तो वो वापिस उनके पास गए कि आप मेरे लिए ये मूर्ति बना दीजिए। तो पहले से ही मना कर दिया कि सॉरी ये मूर्ति मैं नहीं बना सकता, ये मूर्ति मैं नहीं बना सकता, आप मेरा पीछा छोड़िए, मुझसे नहीं होगा ये काम, मैं नहीं कर सकता, आई मीन देयर इज नथिंग टू डिस्कस इन दिस, आप खामखा मेरे पास आते हो डिस्कस करने के लिए, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता इसमें, ये मूर्ति मैं नहीं बना सकता। अभी ऐसे करते करते 6 महीने निकल गए, मूर्ति बनाना ही अभी तो स्थपति ने मना ही नहीं बोला है, 6 महीने ऐसे ही निकल गए, मूर्ति इतने सब प्रयास किए, बार बार उनको बोले तो मनाई करते गए, सब बना कर दिए। सो सब लोग परेशान थे कि अब क्या किया जाए, ये तो मनाई कर रहे, तो क्या भगवान सिंहदेव यहाँ प्रकट होना नहीं चाहते। तो सब भक्तों ने उनको कहा कि तुम एक बार फिर से जाओ और प्रयास करो कि अगर हमसे वो स्थपति तैयार हो जाए मूर्ति बनाने के लिए। तो फिर से गए, जैसे वो उस भक्त ने दूर से देखा दो स्माइल दिया उनको, लगा कि अभी फिर से कहेंगे मुझे मूर्ति बनाने के लिए। तो जैसे वो आए तो उन्होंने कहा कि वो भगवान नृसिंहदेव बोले आप मेरे साथ आइए, चलिए बैठिए, बिठाया बैठ, अब सब अच्छा सा स्वागत, पानी वानी दिया अच्छे से, फिर बोले आप बैठो एक मिनट, फिर अंदर से जाकर के कोई ग्रंथ लेकर के आए, अस्तपति ग्रंथ लेकर के सीधा खोला, बोले ये ग्रंथ है, ये हमारा गाइड है, जो भी अस्तपति ये सब शास्त्र को फॉलो करते हैं हम लोग, ये शास्त्र है, ये वेदों में से आता है, अब मैं आपके सामने पढ़ के दिखाता हूँ, तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है ना, मैं पढ़ के दिखाता हूँ। तो उन्होंने शिल्प शास्त्र खोला और शिल्प शास्त्र खोल करके उन्होंने अलग अलग भगवान के अलग अलग स्वरूपों की मूर्तियों के विषय में बताया कि ये विग्रह बनता है, ये विग्रह बनता है, आप बताओ नरसिंह देव का, अपने नरसिंह देव का पर्टिकुलर चैप्टर खोलते हैं, नरसिंह देव का खोला शास्त्र में क्या लिखा है, नरसिंह देव के विषय में जब पूरा बताया तो फिर उन्होंने वर्णन शुरू किया श्लोकों का वर्णन कि वो बड़े अग्निमय होंगे, उनकी ज्वालामय, राइट, यस, और वो ऐसे ऐसे ढूंढ रहे हिरण्यकशिपु को, सो इसे यस ऐसे ही चाहिए, बोले वो जो घुटनों से बैंड होने चाहिए, राइट, घुटने उनके झुके हुए होने चाहिए, हाँ बल बिल्कुल एक्सैक्ट वही हमारा विग्रह है, देखिए ये हमारा स्केच में भी वही है, स्केच जो हमने बनाया वो स्केच भी उनको दिखाया, और मैं तो चकित रह गया कि कितना एक्यूरेट बता रहे, और बोले ये विग्रह जो है ये आता है उग्र नृसिंह में, और वह खुश हो गए कि ये तो तुम जो सोच के बना के लेके आए हो रफ था स्केच, तो बोले तुम जो बना के लेके आए हो वो तो शास्त्र में है ऑलरेडी, एक काम करो मैं तुम्हें इसका स्केच अपने हिसाब से बना करके देता हूं कि जो शास्त्र में लिखा है ना कि जैसा मूर्ति कैसा होना चाहिए, तो मैं तुम्हें अपने हिसाब से एक स्केच बना करके बताता हूं, और फिर वो स्केच देखना और फिर तुम मुझे बताना। सो उन्होंने उसका पूरा गाइडलाइन के आधार पर उन्होंने पूरा स्केच बनाया, तो पहले मना तो किया था, बोले स्केच बनाएंगे जो भी करेंगे लेकिन मूर्ति तो नहीं बनेगी, तुम रह सकते हो इधर हमारे यहाँ रहो, लेकिन मैं उसका स्केच 7 दिन बना, 7 दिन तक तो स्केच ही बना रहे थे मूर्ति का, और पूरा 7 दिन के बाद ये स्केच बनाया पूरा आउटलाइन, और फिर दिखाया कि देखो इज दिस योर विग्रह, ऐसा तुम जाते हो, हाँ एग्जैक्टली यही चाहिए हमें स्केच, तो बोले अगर तुम्हें समस्या तो कोई प्रॉब्लम ना हो भले तुम बना नहीं सकते लेकिन ये स्केच तुम मुझे दे सकते हो जो तुमने बनाया है, ये स्केच मैं रखना चाहता हूँ अपने पास एक कॉपी, तो बोले हाँ रखो मुझे क्या है, मैं तो मना किया मैं तो नहीं बना सकता, तो स्केच दे दिया उनको, तो स्केच लेकर के हमारे मंदिर मायापुर में वापिस आए, दिखाया सब भक्तों को, सब भक्त लोग कितना प्रसन्न हो गए, कितना सुंदर स्केच, कितना सुंदर, यही मूर्ति हमें चाहिए, ऐसा ही मूर्ति चाहिए, यही मूर्ति हमें बना के दीजिए, तो बोले तो मना कर रहे, किसके मना कर रहे, साफ मना कर रहे, ये मूर्ति मैं बनाऊंगा ही नहीं, बोले एक बार तो ट्राई करके देखो, एक बार ट्राई करके देखो, तो उनको भी लगा अब कैसे जाऊं मैं, ऑलरेडी इतनी बार जा चुका हूं अब कैसे जाऊं, तो फिर गए वो भक्त वापिस उस्तपति के पास, और जाकर के वो ये स्केच हाथ में लेकर के सीधे उसके घर पे गए, और जाकर के जैसे वो कुछ बोले उससे पहले, हाँ इस कौन से मूर्ति बनाने आना तुम्हें नरसिंह देव का, ठीक है बना दूंगा, व्हाट, वो चौंक गए, इनको तो कुछ बोला भी नहीं, हाँ बोल लिया तुरंत मूर्ति बनाना है, यस सीधा बना, सीधा हाँ बोल दिया, तो ये कैसे हो गया, तो अब फिर उनका आओ मेरे साथ, कैसे कैसे हुआ कि हुआ था ऐसा कि जब तुमने मुझे इतनी बार प्रयास किया, इतनी बार मुझे कहा मूर्ति बनाने के लिए, निरंतर बार बार जाकर के मुझे कह रहे थे तुम बनाओ मूर्ति, इसलिए तुम जब चले गए उसके बाद में मेरे जो गुरु है आदि शंकराचार्य, कांची के शंकराचार्य, तो और मैं वहां पर जाकर अपने गुरु को मिला, और मेरे गुरु के पास जाकर मैंने कहा कि ऐसे ऐसे इस्कॉन वाले भक्त मेरे पास आए थे और वो इस प्रकार के मूर्ति की स्थापना मूर्ति बनाने के लिए मुझे कह रहे थे, तो मेरे गुरु ने तो पहले सीधा घिस के बोल दिया, डोंट डू इट, बनाओ ही मत ऐसी कोई मूर्ति। लेकिन फिर उन्होंने पूछा कौन थे वो लोग, बोले वो नवद्वीप से आए हैं मायापुर से, और ये हरे कृष्ण वाले लोग हैं, इस्कॉन वाले। तो तुरंत वो शंकराचार्य बोले एक मिनट, नवद्वीप से आए हैं शंकर, हरे कृष्ण वाले भक्त हैं, क्या चाहते हैं वो लोग? तो बोले वो देखो ऐसा मूर्ति वो चाहते हैं। अरे ये तो उग्र नरसिम्हा है, उग्र नरसिम्हा की स्थापना कैसे कर सकते है कोई, इसकी पूजा नहीं हो सकती। उनको पता भी है कि उग्र नरसिम्हा को स्थापित करने का क्या परिणाम आ सकता है, आपने उनको बताया नहीं कि ये बड़ा रिस्की मैटर है उग्र नरसिम्हा को स्थापित करना, ऐसे हजारों हजारों सालों में कभी बनता है, 3000 साल पिछले 3000 साल में पिछले 3000 साल में ऐसा मूर्ति किसी ने नहीं बनाया, ऐसे शंकराचार्य ने बताया। और देवता लोग भी उनको अपनी मंदिर में स्थापित नहीं कराया, देवता लोग भी पूजा नहीं करते ऐसे नृसिंहदेव की, इट्स नॉट इजी। तो बड़े बड़े एक्चुअली एक बार ऐसा हुआ था कि मैसूर के पास एक ऐसा कोई स्थान है, वहां पर किसी गांव में भगवान नृसिंहदेव के ऐसे उग्र स्वरूप के उग्र नृसिंहदेव की स्थापना करने का काम वहां कुछ लोगों ने तय किया था। तो उन लोगों ने बनाया भी उग्र नृसिंहदेव की मूर्ति, लेकिन क्या हुआ, पहले शुरू शुरू में तो बड़ा हाई स्टैंडर्ड पूजा किए थे, रोज एलिफेंट प्रोसेशन होता था और बड़ी हाई क्लास चंदन लगाते थे और फर्स्ट क्लास सेवा होती थी। लेकिन कुछ समय के बाद सेवा थोड़ी 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 कम होती गई, और जैसे सेवा कम होती गई आज वो स्थान अभी तक पूरा घोस्टली हॉन्टेड है, कोई नहीं रहता उधर, पूरा खंडेर बन गया आज गांव मैसूर के पास, पूरा कोई है ही नहीं उधर। कि भगवान नृसिंहदेव की पूजा करना कोई साधारण बात नहीं है, अगर उनको सब बताओ, ये हरे कृष्ण वाले अच्छे लोग है, लेकिन उनको बताओ कि समस्या ये है कि इनकी कोई पूजा कर नहीं सकता, नॉट पॉसिबल। सो फिर वह कहा कि स्थपति ने कहा कि मैं तो गुरु महाराज आप बता, मैं तो उनको हजार बार बता चुके, लेकिन वो बार बार मुझे बोल रहे, इसलिए मैं सोचा कि एक बार आपके पास आकर के पूछूं। और उनको मैंने पूछा भी तुम क्यों चाहते हो ऐसा बनाने के लिए, तो उन्होंने कहा कि हमारे बहुत सारे डिकॉइट्स आते हैं, बहुत सारे डाकू लोग आते हैं और हमें समस्या है, हमारे भक्तों की रक्षा का प्रश्न है, तो और ये मायापुर धाम है। सो गुरु जी ने कहा कि ये तो लेकिन पॉसिबल तो है नहीं, तुम जानते हो, स्थपति को कहा कि ये उग्र कैटेगरी की मूर्ति है, उग्र कैटेगरी में भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, और उग्र कैटेगरी में कहा जाता है कि 9 प्रकार के अलग अलग स्वरूप है उग्र में। भगवान नृसिंहदेव की जो उग्र कैटेगरी है, ऐसे सौम्य कैटेगरी में लक्ष्मी नृसिंह वगैरह जो होता है, लेकिन ये उग्र कैटेगरी, उग्र कैटेगरी में 9 मूर्तियां हैं, अलग अलग स्वरूप है 9। उसमें से जो सबसे 9 में से भी जो सबसे ज्यादा भयानक है, जो सबसे ज्यादा फिरोसियस, जो हैवी है, वो है स्थानु नरसिंह। और तुम जो स्केच बनाकर लेके आए वो स्थानु नरसिंह का स्केच है, दैट इज स्थानु। वो तो देवता लोग भी इसका स्थापना करने से घबराते, वो लोग भी नहीं कर सकते इसकी स्थापना। क्यों? क्योंकि भगवान नृसिंह देव पिलर में से घुटने से बैंड हुए है, इसका सब जंप करेंगे, सीधा कूद करके बाहर आएंगे, दैट इज द हाइएस्ट एंगर ही है, हाइएस्ट एंगर, बड़ा क्रोध है उनका। अभी तो वो वध नहीं किया ना उसको, जिसने किसी को, तो अभी वध करने का पूरा क्रोध बाकी है। तो भगवान नृसिंह देव का पूरा क्रोध इसमें है, इम्पॉसिबल, यू कैंट डू दैट, ये हो ही नहीं सकता। आप बताओ उनको, सब समझाओ कि तुम उनका स्थापना करोगे तो उनका तो कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम्हारा स्थपति का नुकसान हो जाएगा, बोले स्थपति तेरा अशुभ हो जाएगा, तुम मत साबित करो ये मूर्ति। और उनको भी बताओ कि तुम्हारा प्रोजेक्ट को पूरा खत्म कर देगा ये मत लाओ ये मूर्ति को। स्थपति वापस चले गए, ठीक है मना कर देंगे। सो लेकिन हुआ क्या कि कुछ दिनों के बाद एक दिन एक रात को स्थपित को सपना आया और सपने में उनके गुरु महाराज शंकराचार्य, वो गुरु महाराज ने उनको कहा कि तुम इस्कॉन वाले भक्तों की जो मूर्ति है नृसिंहदेव की उसको तुम स्थापित करो, उसकी चिंता मत करो, तुम स्थापित करो। और जब मैं उठा तो मैं सोच रहा था कि क्या था, ये सपना था क्या था। वहां पर मुझे पोस्ट आई कि शंकराचार्य का द्वारा भेजा गया एक लेटर हाथ में आया, तो वो लेटर मैं खोल के देखा तो लेटर में पूरा लिखा था कि गाइडलाइन दे थे मंदिर इस तरह से होना चाहिए, ये से होना चाहिए, और एकदम लास्ट में नीचे एक लाइन में लिखा था कि तुम इस्कॉन का ये जो नृसिंहदेव मूर्ति बनाने का जो प्रस्ताव है उसको स्वीकार कर लो तो बना सकते हो, नो प्रॉब्लम, आई गॉट द परमिशन फ्रॉम द लॉर्ड, यू कैन गेट इट, यू कैन डू इट, तुम ये बना सकते हो भगवान नृसिंहदेव का मूर्ति। उसका एक रीजन ये भी बताया कि मायापुर धाम जो है वो औदार्य धाम है और यहाँ की जो प्रतिभ मूर्ति है वो है चैतन्य महाप्रभु, अर्थात उदार, बड़ी करुणा है उनके हृदय में। तो भगवान नृसिंहदेव जितने मात्रा में वो क्रोध है उनका, उतनी मात्रा में उनका औदार्य प्रकट होगा जब वो मायापुर आएंगे तब। अब यहाँ पर औदार्य जो करुणा है, जो क्रोध है, वो तो सुप्रीम लेवल पर है। तो जैसे ही भगवान नृसिंहदेव मायापुर में आएंगे तो वहां के धाम का मूड एब्सॉर्ब कर लेंगे, वो धाम का पूरा मूड एक्वायर करेंगे। और धाम का मूड क्या है? औदार्य, और इतना कृपालु, जितनी मात्रा में क्रोध है उतनी मात्रा में कृपालु कर। सो यू कैन नॉट इमेजिन कि मायापुर में जो नृसिंहदेव है उनकी कृपा का कोई कोई अंत नहीं है, इतना कृपालु है वो स्वरूप। तो ये जब घटना हुई तो उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है मैं तुम्हारी मूर्ति को बनाऊंगा, यदि भी बड़ा मुश्किल है लेकिन तुम्हारा जो स्थानु नृसिंह मूर्ति है ना वो मैं बनाऊंगा। फिर वो लेटर भी मुझे दिखा दिया कि देखो ये तो मेरे गुरुजी का लेटर, और मैं इतना खुश हो गया, इतना प्रसन्न हो गया, क्या चमत्कार हो गया, भगवान का नृसिंहदेव प्रकट होने के लिए तैयार हो गए। तो उन्होंने कुछ एडवांस पेमेंट दे दिया, तुम रखो ये धन और तुम जो पत्थर की आवश्यकता है वो पत्थर लाओ, इसके बाद भी समय समय पर आता जाऊंगा और धन देता जाऊंगा, तुम मूर्ति बनाने का काम जल्दी से जल्दी शुरू करो। तो बोले कितना समय लगेगा? बोले जब मैं मूर्ति बनाना शुरू करूंगा तब से 6 महीना लगेगा मूर्ति बनाने में। सो बोले ठीक है 6 महीने में मूर्ति बन जाएगी। बोले हाँ 6 महीने में बन जाएगी। मैं खुश हो गया, वहां पर जाकर के भक्त को बताया जाए 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 मूर्ति बनने का हो गया रेडी, अब यू नो 6 महीने में हमारे यहाँ नृसिंहदेव का मूर्ति प्रकट हो जाएगा, यहाँ पर आ जाए। पीपल आर सो हैप्पी सो हैप्पी सो हैप्पी, डिवोटीज आर सो हैप्पी। सो काफी समय हो गया और फिर करीबन 4 महीना हो गया, और 4 महीने के बाद जो भक्त जो थे वो गए वापिस साउथ इंडिया, फिर बहुत सारे पूजा का पूजा के संबंधित कुछ सामान खरीदने के था तो अलग अलग सामान खरीदा, और खरीदने के बाद में सोचा था कि ये सब सामान खरीदते खरीदते बाद में मैं जाऊंगा स्थपति के पास, और 4 महीने तो हो ही गए, 6 महीने में तो बनाने का बोला ही था, तो मैं जाकर के नृसिंहदेव की मूर्ति को फिर अपने साथ वापस लेके मायापुर चले जाएंगे फिर वहां पर स्थापित कर देंगे। तो ये सब खरीद करके गए 4 महीने के बाद स्थपति के पास, स्थपति के पास आकर के कहा कि हेलो हरे कृष्णा। तो स्थपति ने देखा तो कहा मूर्ति रेडी है, तो स्थपति उसकी प्रभु के आंखों में देखते रहे। बोले क्या मूर्ति, कौन सी मूर्ति? बोले जब बनाना शुरू ही नहीं किया तो मूर्ति कहां से लाएंगे? बोले क्या अभी तक तुमने बनाना शुरू ही नहीं किया? बोले नहीं अभी तक कोई ऐसा पत्थर ही नहीं मिला कि जिसमें से मूर्ति बन सके। क्या कह रहे हो तुम, ये कैसे हो सकता है, अभी तक कोई पत्थर ही नहीं मिला। हम हाँ बोले कोई ऐसा कोई साधारण पत्थर में से विष्णु मूर्ति तो नहीं बन सकती, बस स्पेसिफिक पत्थर चाहिए, उसी पत्थर में से 6 फुट का टुकड़ा है ब्लैक कलर का ग्रेनाइट का पत्थर चाहिए, उसमें से ये बन सकता है ना, ऐसा कैसे बन सकता है। वो मैं इतना परेशान, वो भक्त इतने परेशान हो गए कि मैं समझ नहीं सका कि इनको क्या कहूं, अब ऐसे पूरा बिगाड़, बोले तुमने तो कहा था 6 महीने में मूर्ति बना दोगे। बोले मैंने कहा था 6 महीने में मूर्ति बनेगा, लेकिन शुरू करने के बाद 6 महीना, लेकिन शुरू ही नहीं किया तो 6 महीना कहां से गिने। तो थोड़ा हॉट अप जैसा हो गया, बोले ये तो गलत बात है, तुम इस तरह से पहले ऑलरेडी इतने महीने बीत गए और भाई तुम इतने महीने, ये तो कैसे। तो कहा कि देखो भाई हमें मूर्ति बनाना है, कोई उखल नहीं बनाना, कोई ग्राइंडिंग मोटर नहीं बनाना है, मूर्ति बनाना है विष्णु की, हम किसी से भी मूर्ति नहीं बना सकते। सो वो बोले आप इतने सारे पत्थर है, मार्बल की बना देंगे फिर और क्या, ग्रेनाइट की नहीं बनते, तो कोई इतने सारे पत्थर है बड़े बड़े उठा लीजिए कोई भी पत्थर। बोले ऐसा नहीं हो सकता, वो तुम जैसे बोलते हो वैसा नहीं हो सकता। फिर उन्होंने कहा कि तुम्हें पता है ये मूर्ति कैसे बनती है। बोले नहीं। बोले सब कुछ तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि कौन सा पत्थर हमें चाहिए। तो बोले कौन सा पत्थर चाहिए, तो उन्होंने बताया कि सारे पत्थर में मूर्ति बने ऐसा जरूरी नहीं होता है, पहले तो हम उस पत्थर को लेंगे जिस पत्थर से मूर्ति बनानी, फिर उसमें 7 अलग अलग स्थानों में हम टकराव करेंगे, ऐसे उसमें 7 अलग अलग जगह उसको उसका आवाज चेक करेंगे, और 7 स्थान में से अलग 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 आवाज निकलनी चाहिए, मूर्ति में से आवाज निकलनी चाहिए, 7 अलग अलग पत्थर में से, वो पत्थर में से आवाज आनी चाहिए, 7 अलग अलग प्रकार के अलग अलग साउंड आना चाहिए। तो ये है, ऐसे ही पत्थर को हाथ में हम लेते हैं, उसके अतिरिक्त तो और कोई पत्थर तो सूटेबल ही नहीं है शास्त्र के आधार से। ऐसा कोई पत्थर हम हाथ में लेते हैं, फिर उसका दूसरा एक टेस्ट है, एक विशेष प्रकार का एक कीड़ा आता है, वो कीड़ा पीछे से पत्थर को काटना शुरू करता है और साइड में पूरे दूसरी साइड तक आ जाता है काटते काटते, और उस कीड़े के पीछे पूरा मार्ग बनाता जाता है वो, और जब ये हो जाए तब जाके हम ये विश्वास से कहते हैं कि हाँ ये पत्थर से, ये जिंदा पत्थर है, इसमें से मूर्ति बन सकती है। ऐसे पत्थर में से अगर मूर्ति बनाई जाती है तो मूर्ति पर प्रॉपर एक्सप्रेशन दिखाई देते हैं, वो मूर्ति रिसिप्रोकेट करती है, और इतना ही नहीं वो मूर्ति बातें भी करती है और कविता भी गाती है, ऐसी मूर्ति। तो ऐसा पत्थर तो मिलना चाहिए ना कोई, तब जाके। तो मैंने सोचा कि अब बाकी जाके क्या कहूंगा, वहां मंदिर में जाके कहूंगा कि इन लोगों ने ये तो ऐसा बोल रहे हैं अभी तक पत्थर नहीं मिला, तो वो लोग तो और चिल्लाएंगे, बोले इतना समय के बाद आया वो भी बिना हाथ खा लिया था। तो बोले कि मैं आपको एक बात बताना भूल गया था। बोले क्या, कि हमें प्रहलाद महाराज भी चाहिए, हमें प्रहलाद नृसिंह का विग्रह चाहिए। तो वो शपथ जो सस्ताने का, बोले तुम बिल्कुल शास्त्र के आधार से बोल रहे हो। तो क्यों, बोले प्रहलाद नृसिंह का जो विग्रह है वो स्थानु नृसिंह का जो विग्रह होता है उसमें प्रहलाद महाराज होते ही है, उधर ऐसा विग्रह बनता है, अकेला नृसिंहदेव नहीं होते, प्रहलाद नृसिंह का ही बनता है। तो बोले हमें प्रहलाद महाराज, बोले वो तो नहीं हो सकता, प्रहलाद महाराज का मूर्ति नहीं बन सकता। बोले अब क्या हो गया, अब क्यों नहीं बन सकता। बोले तुमने मुझे ऑर्डर दिया है 4 फुट की मूर्ति बनाने का, अब 4 फुट के नरसिंहदेव की मूर्ति के सामने प्रहलाद महाराज तो अमीबा जैसे दिखेंगे। व्हाट, नहीं, हमें हमारे पास तो साइज है प्रहलाद की, हमें 1 फुट का प्रहलाद चाहिए। तो वो और हंसते लगे, उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें 1 फुट का प्रहलाद महाराज बनाना है तो 120 फुट की नरसिंहदेव की मूर्ति बनेगी, शास्त्र के आधार से ये प्रमाण है, 120 के सामने एक ऐसा प्रमाण है। तो बोले वो ऐसा तो कैसे, बोले नहीं ऐसा कैसे हो सकता है। फिर वापिस बहुत डिस्कशन हुआ, तो बाद में सोचा भाई ठीक है, अब तुम्हारा है ही पूरा केस ही पूरा स्पेशल केस है, सब कुछ यू नो अनप्रेडिक्टेबल इज ऑल नृसिंहदेव डिजायर, सो आई एग्री, बोले प्रहलाद महाराज का 1 फुट का बना देंगे, डोंट वरी। सो तो खुश हो गए, घास प्रहलाद महाराज की मूर्ति बनाने के लिए। तो देयर सो सच अ लॉन्ग स्टोरी, देन ही वेंट टू बैक टू द टेम्पल एंड देन ही सेड अबाउट दिस थिंग हैपन, और जब वो मूर्ति बनाएंगे तब बनाना शुरू करेंगे, जब मैं वापस कुछ समय के बाद वापस गए, वो भक्त वापस गए कुछ समय के बाद, तो वहां पर जाकर उन्होंने देखा तो वो बहुत प्रसन्न हो गए थे। क्या बोले, पत्थर तो मिल गया है, 6 महीने बहुत समय निकल गया, लेकिन मैं पत्थर तो ढूंढ लिया। अब ये पत्थर जो है वो उसको उसके ऊपर स्केच बनाना पड़ेगा पत्थर का। तो क्या हुआ, और वहीं उधर रहना शुरू किया, और 1 वीक तक लगातार, 1 वीक तक सब कुछ, घर पे भी नहीं जाते थे उस तरफ भी, वो केवल हाथ में चौक लेकर के और वो देखते रहते थे मूर्ति, वो पत्थर को ही देखते रहते, लगातार 1 वीक तक पत्थर को देखते रहे, इधर से देखा उधर से देखा। उनके कुछ लेबर थे, उनको पत्थर को पूरा प्रॉपर रेक्टेंगल बनाने का बोला, और फिर वो पत्थर को देखते रहे काफी समय तक, पत्थर को देखते रहे देखते रहे। और उसके बाद फिर उन्होंने उस पर डिजाइन बनाना शुरू किया, स्टार्टेड मेकिंग डिजाइन ऑन दैट। सो बाद में हुआ ऐसा कि मूर्ति तो बन गया, वो 15 दिन के बाद मूर्ति बनाना शुरू हुआ पत्थर आने के बाद, क्योंकि 15 दिन तक तो वो सोच ही रहे थे मूर्ति कैसे कैसे बनाए, लेकिन मूर्ति बनाना शुरू किया, मूर्ति बहुत सुंदर निर्माण हो गया। ये मूर्ति बनाने में नए नए तो भी उनको करीब 12 से 14 महीने लग गए। ये मूर्ति बनाने के बाद उनका उन्होंने सोचा कि अभी इस्कॉन को वापस दे सकते हैं मूर्ति, लेकिन ये मूर्ति देने से पहले वो सोचा कि मेरे कुछ मित्र को भी दिखा देता हूँ कि देखो ऐसी मूर्ति बनाई है, बड़ी स्पेशल मूर्ति है ये। तो उन्होंने तुरंत फोन नहीं किया ये इस्कॉन को कि भाई ये तुम्हारा मूर्ति बन गया है। वो मानसून का सीजन था और उन्होंने एक कुटिया में मूर्ति को रखा था, नरसिंह देव की मूर्ति को, और बड़ी तेज बारिश आ रही थी, वो घर पे नहीं थे, और बड़ी तेज बारिश आ रही थी और पूरा इतना तूफान और बारिश आई, और उनका पड़ोसी आकर के चिल्ला करके उनके पास आकर बोला कि जल्दी करो, वो जिस मूर्ति में तुम नरसिंह देव रखा है वो बारिश के अंदर उसमें से फ्लेम आने लगी है, वहां से पूरा ऊपर का छत जल गया है। तो इनको लगा कि वहां अग्नि मूर्ति, बोले उस कुटिया में तो कुछ है ही नहीं, केवल भगवान की मूर्ति के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं, कोई सामान भी नहीं है, तो आग कहां से लगा हुई इतनी बारिश में। और तुरंत जाके देखा मूर्ति को तो कुछ नहीं हुआ, देखा मूर्ति को तो कुछ नहीं हुआ है, तो वो तुरंत सोचने लगे कि तुरंत जाके फोन किया इस्कॉन वालों को, भाई तुम्हारी मूर्ति को यहां से ले जाओ, वो यहां अब रहना नहीं चाहते, तुम्हारे यहां आना चाहते है। सो ही इज वेरी ईगर नाउ, अभी अभी तुरंत ऑन द स्पॉट, अभी इसी समय आओ तुम और मूर्ति को ले जाओ, नहीं तो कुछ समय के बाद तो हम यहाँ पर सब कुछ जलना शुरू हो जाएगा, और ऐसी मूर्ति है। तो भक्त लोग बहुत खुश हो गए और एक ट्रक अरेंज करके उसमें आधा भर दिया मिट्टी से, और सब वहां पर चले गए नरसिंह देव के पास। मैं तो भूल गया, वो भक्त जो है वो तो कह रहे कि मैं तो भूल गया कि भगवान नरसिंह देव का है मूर्ति भी तो वजनदार होगा, उसको कैसे उठाएंगे। तो वहां पर जाके मैंने चेक किया तो पता पड़ा कि इस मूर्ति का वेट है 1000 किलो, है ना। तो ओ बाबा, तो बहुत बड़ी मुश्किल से बहुत मेहनत से कैसे भी करके मूर्ति को रखा, बहुत लोगों ने इकट्ठा करके उसको रखा, लेकिन उन्होंने सोचा कि इस मूर्ति का तो तुमने आंख बनाया, अंत में आंख बनाई जाती है। तो स्थपति ने बोला आंख क्या, बोले आंख भी बना दिया, प्राण प्रतिष्ठा भी मैंने कर दिया, आरती भी उतार दी उनकी, वो सब कुछ हो गया, अब तुम यहाँ इनको यहां से ले जाओ, इनको यहां ज्यादा मत रखो नहीं तो समस्या हो जाएगी। तो हो तब जाकर, अब तो भगवान प्रतिष्ठित हो गए, यहाँ तो भगवान साक्षात विराजमान है, तो अब कैसे करें। तो भगवान नृसिंहदेव स्वयं भगवान को ही लेके जाने का है, और वो भी भगवान नृसिंहदेव को, और मिट्टी में भी ढा करके लेके गए, और 24 घंटे के अंदर सब प्रकार की जो पास लेने पड़ते ना, अलग अलग डिपार्टमेंट, बॉर्डर क्रॉस करनी है तो सब NOC लेनी पड़ती सब जगह से, तो अलग अलग डिपार्टमेंट जो होते हैं, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, फॉसिल सेक्स डिपार्टमेंट, आर्ट एम्पोरियम डिपार्टमेंट, तो इन सब के डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है। तो उनसे 24 घंटे के अंदर सब कुछ हो गया, क्यों नहीं होगा, भगवान नृसिंहदेव साक्षात है तो सब कुछ अपने आप हो गया। लेकिन ये सब लोग ऐसा चाहते थे कि हमें पहले भगवान नृसिंह सबके डायरेक्टर उन लोगों का पहले हमें वो मूर्ति का दर्शन कराओ फिर हम आपको परमिशन देंगे। तो सब लोग दर्शन के धन्य हो गए और फिर भगवान नृसिंहदेव की मूर्ति को लेके गए। जहां पर बीच में कोई भी रोकता था टोल वाला आता था तो वो फोटो दिखा देते स्केच, वो फोटो जो मूर्ति का था वो फोटो बोले ये मूर्ति को हम लेके जा रहे। जैसे फोटो देखते सब लोग बोलते ठीक है ठीक है ठीक है जाइए आप जाइए। भगवान नृसिंहदेव के होने का ये तो प्रभाव था ही और वहां पर सब भक्त लोग कीर्तन कर रहे थे मंदिर में कि भगवान नृसिंहदेव की मूर्ति अभी आएगी प्रकट होंगे यहाँ पर। भगवान नृसिंहदेव की मूर्ति को लेकर के आए और स्थापित तो किया और सब बताया कि ऐसा 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 हुआ था और ये सब घटना बताई। तभी सब लोग सोच रहे थे क्या करे क्या करे, सबने आपस में तय किया कौन करेगा पूजा। पहले 3 दिन का फेस्टिवल मनाया 28, 29, 30 जुलाई तो 3 दिन डीटी इंस्टॉलेशन का फेस्टिवल और मन में एक प्रकार का भय था। 1986 में हुआ है, मन में एक प्रकार का भय था कि कौन करेगा पूजा कौन करेगा पूजा। सब लोग भयभीत तो थे लेकिन इतना जोर जोर से कीर्तन हुआ तो भक्तों को लगा कि अब शायद सब ठीक हो जाएगा। तब तो जननिवास प्रभु को पूछा कि तुम करोगे सेवा, बोले नहीं मैं कैसे सेवा कर सकता हूँ। पंकजांगी प्रभु को पूछा तुम करोगे सेवा, तो उन्होंने भी मना कर दिया, बोले इतना भयानक स्वरूप की पूजा मैं कैसे करूँ, कितना उनका फेरोसियस फॉर्म है तो किसी को तो करनी पड़ेगी। तो मैनेजमेंट ने कहा कि तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा। तो फिर पंकजांगी प्रभु बोले ठीक है प्रभु का इच्छा है नृसिंहदेव का इच्छा है तो आई विल कम आई विल डू इट। पंकजांगी प्रभु से मैं करूंगा नृसिंहदेव की सेवा। तो फिर वो तुरंत तैयार हुए और फिर भगवान नृसिंहदेव की सेवा आरंभ हुई। शुरू शुरू में बहुत पुजारी सब लोग डरते थे भगवान नृसिंहदेव से वो मूर्ति से। तो क्या होता भोग लगाने आते थे, एक बार ऐसा हुआ एक बार भोग लगाने आया तो क्या करते भोग लगा करके वो ऑल्टर बंद करके तुरंत भाग जाते थे और कैसा मंत्र बनता सब फटाफट 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 बोल करके और बड़ा भय लगता था उसको बड़ा डर लगता था। तो एक दिन क्या हुआ कि रात मंदिर आपने देखा है नृसिंहदेव का ऑल्टर ऑल्टर बंद किया दरवाजा बंद किया अंदर जा करके भोग घंटी लगाई तुलसी रखा भोग घंटी भगवान को भोग लगाया और फिर जैसे वो वापिस आ रहे थे धाम बड़ा सा आवाज आया और उसके जो पुजारी थे उसके हार्ट बीट्स बढ़ गए। वो गेट की ओर था और पीछे नृसिंहदेव का मूर्ति था तो उसके हार्ट बीट बढ़ गए। बोले अब क्या हुआ और किसी ने उसके कंधे पे हाथ रखा ऐसा उसको लगा उनके कंधे पे किसी ने हाथ रखा तो उसको बड़ा भय लगा कौन है किसने मुझे पकड़ा है कौन रोका भगवान नृसिंहदेव तो नहीं रोका। तो जैसे भगवान की मूर्ति के सामने मुड़ कर देखा तो जैसे मानो भगवान मूर्ति में से आवाज आ रही थी बोले तुम इतना डरते क्यों। बोले मैं तुम्हारे तुम लोगों ने बुलाया तुम्हारे लिए तुम लोग की रक्षा करने के लिए तो मैं आया हूँ देखो मेरा मूर्ति देखो ध्यान से मैं कितना स्माइलिंग फेस में हूँ इतना डरते क्यों क्यों इतना भय रखते तुम लोग की रक्षा के लिए आया हूँ अच्छे से सेवा करो ये क्या घबराते सेवा करो। और फिर वो तो दौड़ करके भाग गया बाद में और फिर वो सोच रहा पुजारी को बताया ऐसा सब हुआ। फिर सब पुजारी बोल रहे नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है ऐसा नहीं है पूजा। फिर एक दिन ऐसा वो पंकजांगी प्रभु को भी भय लगता था। अब पंकजांगी प्रभु वहां पर भगवान नृसिंहदेव के पास थे। एक दिन उन्होंने बहुत सोचा भगवान नृसिंहदेव के विग्रह को देख देख कर फिर उन्होंने सोचा कि वो जो ही वही राधा माधव है वही नृसिंहदेव है उसमें कोई अंतर नहीं है। तो बोले अपने ही भगवान से पूजा करने के लिए जो राधा माधव की पूजा करते हैं उसी तरह से नृसिंहदेव की उसमें इतना भयभीत होने की क्या आवश्यकता है और भगवान नृसिंहदेव तो भक्तों की रक्षा करने के लिए आए हैं अगर मुझमें कोई कमी होगी तो उसको हटा देंगे तो इसमें भयभीत होने की क्या आवश्यकता है। और फिर वो सब पुजारी अच्छे से सेवा करना शुरू किया। एक दिन ऐसा हुआ कि एक पुजारी को चक्र बिल्डिंग में पहले हमारे सब पुजारी लोग रहते थे तो वहां पर एक पुजारी जो बेड था एक पलंग उसके ऊपर जैसे बल्ब होता है ना बेड तो उस प्रकार के बेड में वो सो रहे थे पुजारी पुजारी केवल अपना कॉपी नियाल अंडरवियर पहना हुआ था और कुछ नहीं वैसे सो रहा था। और उसने देखा उसको उसकी आंख आधी रात को ऐसा खुली और वहां उसके बेड पर देखे भगवान नृसिंहदेव को बैठे हुए
भगवान नृसिंहदेव
बड़ा डर गया Говорили, эй, дарома, вагон на шиндевника. Мэту, ты на кучу карунгани, и там дырца кьё. Леги, то кам мэд, исли ая хон, ки тум, джаб субе, мангла арти ке пэле, джаб алтар мэ акар ке, тум лайт он карте хо, то во тумэ бэди спотлайт ракхи хуэ, во тум во бэди вали лайт сиди мэре аанк мэ, нен мэ се уктти сиди аанк мэ спотлайт ати хе. То пэле кой чхота вала лайт рахо, во чхота вала лайт, थोड़े समय के बाद फिर बड़ा लाइट करो, एकदम से बड़ा लाइट मत करो, ठीक है? और इतना डरो मत, तो भगवान वो तो भगवान तो चले गए वहां से, लेकिन ये भक्त इतना भयभीत था कि सीधा दौड़ करके भागा सीधा मंदिर की ओर, तो सब भक्त लोग उसको देख कर गए, कुछ लोग बोले ओए क्या कर रहा है ओए, कुछ लोग हंसने लगे बोले ये क्या हो गया इसको पागल हो गया क्या. То Акар ке бата ке айса айса сапна ая та. То он ке тхи ке джаньяс прабхан джаньяс. Он ке кой бат ни. Апне ус чиж ка апне джаян ракхен ке. Лекин тум аби джао. Апне капде пен ке ао. То бад ме он ко дека. Аре ме капде би нахи ага ао. То фир бохот сурминда ого ге. Фир пата пада ки саб лог муже кью дека рае те. Бол ме чадди пен ке ая та. То фир вафис бара сурминда ого ке. Пуджари чале ге. Фир он ке апна कपड़ा वगैरह सब पहन के फिर वो पूजा में जो सुधार लाना था वो सुधार लाए. तो ऐसे तो अनेक लीला है भगवान नृसिंहदेव की. कई बार भक्त लोग सोचते हैं कि भगवान नृसिंहदेव से हमें क्या लेना है, हम तो वृंदावन की भक्ति करते हैं, हम तो ब्रज भक्ति करते हैं, तो राधा कृष्ण की भक्ति ठीक है, नृसिंह तुम लोग जाओ नृसिंहदेव की पूजा करो, हमें क्या लेना है. लेकिन एक्चुअली ध्यान से देखा जाए तो ऐसा पूर्ण ये सत्य नहीं है, वास्तव में सत्य नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि भगवान नृसिंहदेव को वो भक्त ज्यादा पसंद है कि जो बहुत सारे भक्त हैं नृसिंहदेव के, लेकिन भगवान नृसिंहदेव के सारे भक्तों में जो राधा कृष्ण की सेवा करना इच्छा रखते हैं वो भक्त नृसिंहदेव को बहुत पसंद है, वो उनको बहुत प्यारे है. वो इसलिए पसंद है क्योंकि उनका मुख्य काम वो तो वही कृष्ण है, नृसिंहदेव कोई तो अलग थोड़ी है कोई, वो तो कृष्ण वही वृंदावन श्याम सुंदर जो ब्रजेंद्र नंदन है वही कृष्ण है, कोई अलग नहीं है, वही नृसिंहदेव है. लेकिन वो नृसिंहदेव के रूप में हमारे हृदय में से काम क्रोध लोभ मोह मद आसक्ति जो कचरा है जो हमें ब्रज भक्ति तक पहुंचने में हमारे सामने रुकावट खड़ी कर देते हैं, हमारे हृदय में जो काम वासना रूपी जो आकर्षण है जो भौतिक आकर्षण है इसको स्वच्छ करना, उसको नष्ट कर देना, उसको खत्म कर देना, ये नृसिंहदेव का काम है. अन्यथा क्यों भक्ति विनोद ठाकुर जो कि हमारे इतने बड़े महान आचार्य भक्तों ठाकुर नृसिंहदेव को बार बार प्रार्थना करते हैं कि आपकी कृपा से मैं राधा कृष्ण की भक्ति में स्थिर हो पाऊंगा, आप मुझे कृपा कीजिए कि मैं ब्रज भक्ति में स्थिर हो पाऊं, यू विल डिस्ट्रॉय ऑल द इम्प्योरिटीज इन माय हार्ट. सो हम भक्तों को बार बार भगवान नृसिंहदेव से प्रार्थना करनी चाहिए. यहां तक कि श्रीवास ठाकुर जब नृसिंहदेव की पूजा कर रहे थे श्रीवास आंगन में, आपने देखा है ना श्रीवास आंगन में नृसिंहदेव का मूर्ति, नृसिंहदेव की पूजा कर रहे थे और चैतन्य महाप्रभु जब उनको दर्शन दिए तो भगवान मैं ही नृसिंहदेव, आई एम लॉर्ड नृसिंह, भगवान ने अपना नृसिंह स्वरूप दिखाया श्रीवास ठाकुर को. यहां तक कि अद्वैत आचार्य जिस शालिग्राम शिला को आह्वान किया था भगवान को प्रकट करने के लिए तुलसी और गंगा जल से, वो भी नृसिंह शिला थी जो शांतिपुर में है, वो भी नृसिंह शिला है, दैट इज ऑल्सो नृसिंह शिला. भक्ति विनोद ठाकुर और भक्ति सांसद से जो चैतन्य मठ योगापीठ का जो स्थापना किया है वो स्थान में सबसे पहले नृसिंह शिला प्राप्त हुई थी, लॉर्ड नृसिंह वहां पर नृसिंह शिला की पूजा करते थे पहले. सो मेनी सच थिंग, सो मेनी. अब देखिए सब आचार्य हमारे नृसिंहदेव की पूजा करते हैं निरंतर. यहाँ तक कि जगन्नाथ भगवान की स्थापना करने से पहले, जगन्नाथ जी का जो मूर्ति है उसकी स्थापना करने से पहले इंद्र दुम्न महाराज वो जब वहां पहुंचे थे तो जो जैसे उन्होंने शुरुआत की तो सबसे पहले नृसिंहदेव प्रकट हुए वहां पर, और ऊपर घबरा गए बोले हम जगन्नाथ जी की स्थापना करने के लिए यहाँ पर आए, ये तो नृसिंहदेव प्रकट हो गए, ये तो बड़ा भयानक स्वरूप है ब्रह्मा जी. ये ब्रह्मा जी बोले चिंता मत करो, ये भगवान नृसिंहदेव हमारे सब विघ्न को विनाश करने के लिए यहाँ पर प्रकट हुआ है, सबसे पहले इनकी प्रतिष्ठा होगी. तो जगन्नाथ जी की स्थापना होने से पहले भगवान नृसिंहदेव की स्थापना हुई थी जगन्नाथपुरी में, तब जाके फिर जगन्नाथ भगवान का प्राण प्रतिष्ठा हुआ. तो भगवान नृसिंहदेव इज एवरीवेयर, इज एवरीवेयर, और एक प्रसिद्ध मूर्ति है वहां पर देवपल्ली, जब नित्यानंद प्रभु जीव गोस्वामी को लेकर गए थे तो वहां पर नृसिंहपल्ली करके जो स्थान है, तो देवपल्ली में जब वहां पर आए तो भगवान नित्यानंद प्रभु ने दिखाया कि इस स्थान को देवपल्ली बोलते हैं, यहाँ ये भगवान नृसिंहदेव का क्षेत्र है, यहाँ पर एक समय सब देवता लोग यहाँ पर निवास करते थे, सब ने अपने अपनी कुटिया बनाई थी और सब लोग नृसिंहदेव की पूजा करते थे, यहाँ इंद्र की कुटिया थी, उधर गणेश जी की कुटिया थी, उधर ब्रह्मा जी की कुटिया थी, इधर चंद्र की कुटिया, देखो ये सब देवताओं की कुटिया, लेकिन आज सब यहाँ पर खंडहर हो गया, उस समय नित्यानंद प्रभु के समय पे पर सब नष्ट हो गया, अब केवल कुछ कुछ बचे, ये नृसिंहदेव का मूर्ति अभी भी शेष है, उतने सतयुग की मूर्ति है ये, जब भगवान नृसिंहदेव प्रकट हुए थे तो वहां से हिरण्यकश्यप का वध करके यहाँ पर आकर मंदाकिनी जो रिवर है, जो रिवर वहां पर बहती है, इसमें उन्होंने अपने हाथ धोए थे और यहीं पर विश्राम किया था, तो यही वो स्थान है, हम भी यहाँ पर भोजन लेंगे, तो नित्यानंद जी को स्वामी उधर भोजन लिया, और नृसिंहपल्ली जो देवपल्ली भी बोलते हैं उसको, तो भगवान नृसिंहदेव का बड़ा तेजस्वी, बड़ा प्राचीन और बड़ा शक्तिशाली स्वरूप है, बड़ा शक्तिशाली स्वरूप, और अगेन इट इज इन मायापुर नवदीप धाम, सो वेरी मर्सीफुल, बहुत ही मर्सीफुल। नित्यानंद प्रभु ने कहा कि आज यहाँ पर खंडहर है, लेकिन भविष्य में एक राजा आएगा जो भगवान नृसिंहदेव की इस महानता को स्थापित करेगा, और वो राजा यहाँ पर भगवान नृसिंहदेव का नृसिंहपल्ली में एक बहुत विशाल मंदिर की स्थापना करेगा, बहुत विशाल मंदिर बनेगा इस स्थान पे, ऐसा भविष्यवाणी नित्यानंद प्रभु ने किया हुआ है नृसिंहपल्ली में। सो इस तरह से भगवान नृसिंहदेव के बहुत सारे विग्रह और बहुत सारी कथा, एक्चुअली हमने सोचा था कि आपके साथ बहुत अलग अलग नृसिंहदेव की कथाओं की चर्चा करेंगे, लेकिन समय बड़ी तेजी से भाग रहा है और आप सब भक्तों ने सुबह से फास्टिंग किया होगा, सो यू मस्ट बी टायर्ड, सो हम संक्षेप में आपके साथ भक्तों के साथ नृसिंह स्तुति एक बार गाते हैं और फिर आप सब भक्त लोग नृसिंहदेव का सपना देख करके सो जाइए। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलाददायिने हिरण्यकशिपुवक्षः शिलटङ्कानखालाय इतो नरसिंह परतो नरसिंह यतो यतो यामि ततो नरसिंह बाहे नरसिंह हृदये नरसिंह नरसिंह मादेम शरणं प्रपदे तव करकमलवरेणकम् अद्भुत शृङ्गम् दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गम् केशवद्विता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे तव कर कमल वरे नखम अद्भुत शृंगार दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गम् केशवद्विता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंह दे जय नरसिंह दे नरसिंह दे जय नरसिंह दे जय प्रह्लाद महाराज जय प्रह्लाद महाराज प्रह्लाद महाराज जय प्रह्लाद महाराज प्रभुपाद 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 Bhakti Vignaneshwara Narasimhadeva Bhagavan ki jai. Bhakta Raja Prahlad Maharaja ki jai. Srila Prabhupada ki Hare Krishna Mahamantra ki Harinam Sankirtan ki Sri Narasimhadeva Avirbhava Mahamahotsava ki jai. Narasimha Chaturdasi Mahamahotsava ki jai. Sri Sri Prahlad Narasimhadeva ki jai. Sri Prahlad Maharaja ki jai. Gaura Premanande. Thank you very much.